Bombay 7:30, almost 8 o'clock, but Indian time it was 12 o'clock. So I could not sleep, and morning 5 o'clock I boarded there. Then 7:30 arrived in Delhi and missed my bag, and so days like that. Anyway, so
where you lost?
In this luggage section, no? In Air India.
Airport.
Yeah, Air India. They took my luggage at check-in, and it didn't appear in the belt. So I complained them. So they call out, they didn't load in proper plane. So then next in load, next plane, and it come and give it to me. And their mistake. So I suffer unless. So I should talk just something like that, or day after tomorrow is Chandan Jatra. Should we discuss something like that? If you permit, then. They must be knowing many things, but okay, we'll discuss something about Chandan Yatra, what in Chaitanya Charitamrita Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu Varnan ke Madhavendra Puri ka Bhakti, Devotional Service of Madhavendra Puri, that chapter. ये चंदन यात्रा के अंदर ही आता है. कीर्तन तो प्रभु जी ने कर ही लिए, हमारा गला तो गर्धवेर गला है ना. नहीं, प्रथम कोयल को आवाज सुन करके फिर गधा की आवाज सुनने से अच्छा नहीं लगेगा. तो प्रभु जी ने कीर्तन कर लिया, अच्छा हो गया. फिर और कीर्तन आवश्यकता तो नहीं है ना. फिर आवश्यकता है तो प्रभु जी रिक्वेस्ट करना चाहिए जो कीर्तनिया है. हम तो कीर्तनिया नहीं है. तो कौन सा गीत गाएंगे बोलो. चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम. आप कौन सा चैतन्य महाप्रभु का गीत ज्यादा गाते हैं? गुड. महाप्रभु वाज गोइंग टुवर्ड्स जगन्नाथपुरी. दैट वाज द सो जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन. वो भी ठीक है, छोटा है यो. आपके पास बुक्स है ना जय जय जगन्नाथ. उसका एक तो बंगाली स्वर में गाते हैं, एक सभी लोग भक्त लोग गाते हैं स्वर में. लेकिन क्योंकि ये जगन्नाथ जी के भजन है, तो जगन्नाथ जी के एक फेवराइट संग है जो जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त साल बेग ने रचना किए थे. बड़े प्रसिद्ध है उड़ीसा में वो प्रार्थना जगन्नाथ जी का. और उसके स्वर में भी मैं जब भी वृंदावन वगैरह में कभी गाता हूँ तो इस स्वर गाता हूँ. That is जगन्नाथ जी के याददाश्त आता है, क्योंकि वो स्वर जो सुनेगा जब उड़ीसा के लोग समझेंगे तो यही गीत है ये. तो कोशिश करेंगे आप लोग, अगर प्रयास करेंगे उसमें प्रयास गाने के लिए, है ना. आप लोगों में से कोई उड़ीसा के हैं? Somebody is there? कोई नहीं. कोई नहीं है, आश्चर्य बात है. एक ब्याज विदाउट उड़ीसा कोई ना कोई तो होना चाहिए. बंगल से एकदम चश्मा तो है. तो जो फेमस सॉन्ग है आप कोई सा सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, उसका वर्डिंग है इस प्रकार. अहे नीला शैल प्रवल वत्न वारण मुआ रत नलिनी वन को कर दलन. नीला शैल श्री जगन्नाथ है. नील मीन्स ब्लू, शैल मीन्स माउंटेन. तो वो ब्लू माउंटेन में नीलगिरी, नीलगिरी नाथ, तो इसलिए उसका नाम नीला शैल है. अह नीला शैल प्रबल मत्त वारण. मत्त मीन्स डिस्टर्बेंस, प्रबल मीन्स ह्यूज ग्रेटेस्ट ट्रबल. जगन्नाथ जी की प्रार्थना करने से ही विल टेक ऑल द ट्रबल्स अवे, बिग ट्रबल्स. प्रबल मत्त वारण मो आरत नळिनी वनकु कर दळन। आर्त मीन्स आर्त जिज्ञासु नो, व्हेन वी आर वेरी मच फियरफुल, वी आर एबल टू प्रे, इट्स आर्त। सो मोर आर्त नळिनी मीन्स लोटस, माय हार्ट एंड द लोटस ऑफ माय हार्ट इज रियली फुल ऑफ फियर, सो प्लीज प्रोटेक्ट इट। सो दैट इज द फर्स्ट तांजा। साल वेग इज टू बिग अष्टपदी, तो उसका टोन जिस जो मात्रा है, जो राग है, स्वर है, वही स्वर के अनुसार उसको गाने के प्रयास करेंगे। ये ओडिशा में कहीं भी जाओ, वो पद अगर बोल देंगे तो बोलेंगे आदि जगन्नाथ के नाम गाता है। आहे नील सईल प्रबल मत्त वारण, प्रबल मत्त वारण, मो आरत नळिनी वनकु कर दळन। आहे नील सईल, लाइक दिस। सो विल पुट दिस भजन में इन दिस स्वर। जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन, जय जय जगन्नाथ त्रिभुवने करे चार चरण बंद, जय जय जगन्नाथ सचिरानंदन, जय जय त्रिभुवने करे जार चरण वंदन, नीला चले शंख चक्र गदा पद्म धारी, नीला चले पद्मधर, नीला चले नदिया नगरे दंड कमंडल कर, नदिया नगरे दंड जय जय जगन्नाथ रावण बधिला, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करिला, प्रकाश करिला, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री राधा भावे बे गौरव कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 स्वामी की श्रीताय गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की तो एक दिन के बाद वो तिथि आता है जिसको वैशाख मास के तृतीय दिवस करके माना जाता है। उसको हमारा राष्ट्रीय पंजिका में अक्षय तृतीया करके मानते हैं। अक्षय मतलब जो क्षय नहीं होता है, वो जो थर्ड डे ऑफ बैसाख, वो थर्ड डे इट्स इम्पेरिसेबल अक्षय। क्योंकि इसे कहा गया है कि इस दिन ये एक युग आदि है, एक युग शुरू हुआ था। कहते हैं कि सत्य युग का शुरुआत उसी दिन हुआ था। और जो ग्रेन्स है, जो हम ग्रेन खाते हैं, वो ग्रेन्स का जन्म भी उसी दिन हुआ था। तो इसलिए एक महान दिवस है। तो उसी दिन में जो भी जो शुभ कर्म करते हैं उसको अक्षय होता है। ऐसे अक्षय नवमी, अक्षय द्वितीया, अक्षय तृतीया, अक्षय सप्तमी, जो चार युग है, चार युग के युगादि है, चार ये एक युगादि है। जैसे कार्तिक महीना में से औला नवमी, अक्षय नवमी, उसका दिन भी एक युगादि होता है, नौ द्वापर युग का शुरुआत हुआ था। तो ऐसे ऐसे और हमारे लिए और एक विशेष तिथि है, जो जगन्नाथपुरी में जो प्रतिवर्ष रथ यात्रा होता है और श्री जगन्नाथ जी का रथ प्रतिवर्ष निर्माण होता है। श्री जगन्नाथ जी तो सख्यात कलिजुग के उपास्य देव हैं, तो उनके जो घोष यात्रा महोत्सव के लिए उनका जो रथ निर्माण होगा, रथ निर्माण का शुरुआत उसी दिन से होगा। विधिवत पूजा हो करके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नंदी घोष ताड़ध्वज देवदोड़न, इन तीन रथ का शुभ निर्माण तिथि अक्षय तृतीया के दिन शुरू होना ही है। ये मेंटेन ट्रेडिशन है, अक्षय तृतीया दिन रथ निर्माण होगा। तो रथ पूरा होगा रथ यात्रा के समय से कुछ दिन पहले, तो रथ यात्रा होगा उसी दिन शुरुआत होता है। और उसी दिन जो हम तो देखें ओडिशा में बाकी जगह देखने अखी मुट्ठी होता, मतलब जो खेती में, क्योंकि ग्रेन्स का अपीरेंस डे है, तो खेत में जो लोग जा करके उस दिन थोड़ा बहुत खेत वपन करेंगे, बीज बोएंगे थोड़ा बहुत खेत में, अखी मुट्ठी बोलते हैं उसको, एक मुट्ठी कम से कम अक्षय तृतीया को लेकर करना है, क्योंकि अक्षय होता है उस दिन जो करेंगे तो करते हैं। कई चीजें से होता है, अति शुभ होता है। तो ये तो अति शुभ है। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव के लिए इस दिन और एक घटना हुआ था। इस अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को गर्मी लगा था, वैशाख मास है तो बहुत गर्मी लगता है, तो तभी जमाने में तो एसी नहीं था, कूलर नहीं था, इलेक्ट्रिक नहीं था, फैन फैन की बात ही अलग है, तो बड़े गर्मी लग रहा था उनको, महसूस हो रहा था, तो गर्मी से बचने के लिए इतने से आया मैंने क्लास राइट ना अटेंड कर। तो गर्मी से राहत पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक फॉर्मूला बताया, आप नाम सब सुने होंगे, माधवेंद्रपुरी के श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे परम आराध्य भगवान है, उनके श्री गुरुदेव है ईश्वरपुरी और उनके गुरुदेव है माधवेंद्रपुरी, मतलब चैतन्य महाप्रभु के दादा गुरु। तो उनको भगवान साक्षात बोले, बोले माधवेंद्र तू मुझे बहुत नहलाया धुलाया सब सेवा करता लेकिन गर्मी नहीं जाता मेरे से, वृंदावन में वेरी टू मच हॉट, वैशाली गोवर्धन में बहुत गर्मी है, मैं क्या करूं, मैं तो पानी इतना डलवाता हूं, इतना पंखा चलता हूं ना, पंखा पानी से कुछ नहीं होता, इतना हाई टेम्परेचर है 50 से ऊपर सब गर्मी होती, फिर मैं क्या करूं। तो भगवान ने स्वयं बताया क्या करना चाहिए, अगर नेचुरल प्रोसेस एसी कूलर फूलर ना है तो भगवान ने बोले तू मुझे चंदन लाकर लेप दो, चंदन मैं कहाँ से लाऊं, तो यूपी एरिया में तो चंदन होने को जानते नहीं थे। बोले देखो जगन्नाथ जी ये विश्व ब्रह्मांड के सबसे पुराना ठाकुर है, वो सबसे पुराना मंदिर है, उनके पूजा बहुत पुराना जमाने से चलते आ रहा है, और वहां जाओ देखो वहां के सेवक उनको चंदन देते हैं, डेली चंदन लागी होता है वहां, और तुम जाओ थोड़ा यहाँ से चंदन लेकर आओ मेरे लिए भी, समझे चंदन लगाओ कम से गर्मी के समय थोड़ा बहुत लगाओ, बाकी साल भर तो नहीं लगा लगाया चलेगा, जगन्नाथ जी साल भर लगाते हैं, मैं कम से कम गर्मी के समय थोड़ा तो लगा दूं, इतने में नहीं करेगा मेरे लिए, ना तो फिर वहां जाना पड़ेगा ना, वहीं जाना पड़ेगा, यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ के लोग मूड नहीं जानते, वहां जाकर थोड़ा चंदन लाओ और आकर मुझे थोड़ा लगाओ तब मेरा गर्मी उतरेगा, मुझे थोड़ा ठंडा मिलेगा। चंदन का विशेष गुण जानते ना क्या है, चंदन का क्या गुण है, सुगंध और शीतल, चंदन का दो विशेष गुण होता है, सुगंधी होता है और शीतलता देता है। तो बोले कि तो इसलिए तो चंदन ला करके दो, शीतल भी होगा सुगंध भी होगा, बड़ा सुंदर हो। तो माधवेंद्रपुरी को भेजे थे और माधवेंद्रपुरी लाए, वही वैशाख महीना के उसी दिन चंदन ला करके जब लगाने के, यहाँ तो पहुंचे नहीं थे रास्ता में ही थे, तो गोपाल जी बोले देखो इतना दूर क्यों आओगे, अब यहीं लगा लो, री मैं आपके लेकर रहा हूँ, आपको गर्मी लग रहा है ना, कोई बात नहीं, आजकल सब मैं देखता हूँ रिमोट एक गाड़ी फाड़ी में यहाँ बैठ करके डोर बंद कर देते हैं, यहाँ बैठ कर डोर टिंग खुल जाता है, डोर खुल जाता है ना, कितने मीटर से काम करता है, 100 मीटर से है? लेकिन 200-500 मीटर की 1-2 किलोमीटर में काम करेगा नहीं करेगा ना, लेकिन भगवान का रिमोट ऐसा है वो केवल 1500 माइल दूर में चंदन लगाए लेकिन वहां उनको ठंडक मिला, 1500 माइल के बाद में वहां चंदन लगाओ ही विल फील द कूल इफेक्ट हियर इन गोवर्धन, चंदन विल बी देयर इन बालेश्वर। तो ये किए थे भगवान ने, तभी जमाने में रिमोट था ऐसा, सो पावरफुल। तो वो भी अक्षय तृतीया से शुरू किए और लगभग 21 दिन जब तक उनका पास चंदन जितना इकट्ठा करके लाए थे था सब तक लगा दिए, प्रतिदिन लगाते लगाते गए, तो चंदन सेवा उसी तिथि से शुरू होकर के 21 दिन तक किए थे माधवेंद्रपुरी ने। तो उन्हीं के परंपरा को उन्हीं के पदांग का अनुसरण करके उनके अनुयायी वैष्णवगण अद्यावधि गौड़ीय वैष्णवगण इस अक्षय तृतीया के दिन नाम चंदन तिथि मानते हैं। तो चंदन बेस करते हैं ठाकुर जी का और जिसका पास सामर्थ्य है 21 दिन तक भी करते हैं, माधवेंद्रपुरी किए थे तो 21 दिन तक करते हैं चंदन बेस, ठाकुर जी गर्मी महसूस करते हैं इस समय में तो 21 दिन तक उनका चंदन बेस होता है उनको ठंडक देने के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद शांतिपुर में रहे तो उसके बाद अद्वित भवन से जब अद्वित भवन में जो रहे थे, चैतन्य चरितामृत में इसे वर्णन आता है कि अद्वैत भवन में जब महाप्रभु मैंने नित्यानंद प्रभु उनको छल करके ले आए, वो तो वृंदावन जाना जा चाह रहे थे, उनको छल करके जैसे तैसे अद्वैत भवन में लाए तो वहाँ रहे खान पान की, तो सच्ची माता और नवदीप के सारे भक्त लोग आकर उनको मिले। तो मिलने के बाद वहाँ एक प्रकार के उत्सव डनी होने लगा। चैतन्य चरितामृत में लिखा है अद्वैत का घर में प्रतिदिन उत्सव होने लगा, फेस्टिवल। ये उत्सव किस प्रकार का था देखिए, अद्वैत आचार्य कौन है? आचार्य है, आचार्य स्वयं सिखाते हैं, हम आचार्य सीखते हैं उत्सव कैसे करना होता है, दिव्य उत्सव। चैतन्य चरितामृत में इस भाग में वर्णन है उत्सव कैसे हुआ करता था कि अद्वैत आचार्य हजारों संख्या में भक्त उनका घर में थे, तो सारे भक्त लोग को लेकर के सुबह मंगल समय में उठते थे, उठ करके जो उनका स्नान ध्यान पूजा मंगल आरती उत्सव जो करने के बाद, तो उसके बाद उत्सव शुरू होता था। ये तो नित्य नित्य क्रिया है, मंगल आरती करना जप करना ये उत्सव का पाठ नहीं, ये नित्य क्रिया है। ये केवल उत्सव के दिन करना नहीं होता, केवल उत्सव के दिन जप करेंगे मंगल आरती जाएंगे बाकी दिन नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, ये नित्य है, ये उत्सव क्रिया नहीं है, नित्य क्रिया है। तो नित्य क्रिया के बाद में उनका उत्सव शुरू होता था। उत्सव का इवेंट क्या होता था उसमें वर्णन है, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अद्वैत आचार्य घर में अद्वैत आचार्य जो उत्सव किए थे महाप्रभु के प्रेजेंस में, हजारों भक्तों के प्रेजेंस में, वो इवेंट में केवल तीन ही फेस्टिविटी में तीन इवेंट था, तीन मुख्य कार्य होता था उत्सव में। सुबह नित्य क्रिया के बाद में तुरंत फेस्टिवल का मुख्य इवेंट शुरू होता था, वो इवेंट था क्लास भगवत कथा। भगवत कथा होता था लगभग दोपहर लेट आफ्टरनून तक, ऐसा नहीं 45 मिनट आधा घंटा टाइम अब बंद करो, ये क्या है नोटिस, बंद करो सर क्लास बंद करो, स्पीकर को बोल दो नहीं तो उठ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक इतना समय केवल क्लास, इतना मतलब चलता, ये उत्सव का मुख्य अंग था, मुख्य अंग था। अब देखिए चैतन्य चरितामृत में लिखा है तीन इवेंट हुआ करता था, मुख्य अंग था ये हरि कथा। उसके बाद सेकंड इवेंट होता था जो बहुत छोटा समय, बहुत कम समय देते थे, वो इवेंट था प्रसाद का खाने का। हम जो उत्सव करते हैं सबसे बड़ा समय पूंजी टाइम एनर्जी वेस्ट करके सब इसी में लगाते हैं, है ना, नहीं वो उसमें सबसे कम समय देते थे। उसमें भी उसमें वर्णन होता है जो हजारों भक्त इकट्ठा हुआ करते थे और फेस्टिविटी शुरू होता था माने कथा के लिए, तो प्रसाद बनाने के लिए हमारे तो फेस्टिविटी में 50% मोर देन 50% लोग किचन में जाते हैं, सर्विंग टूर सबसे बड़ा, सर्विंग टीम, कुकिंग टीम, अरेंजिंग टीम, उसी में सब खत्म हो जाते, उत्सव क्या करेंगे। लेकिन वहां पे अद्वैत भवन में जो उत्सव हुआ करता था उसमें कुकिंग, कटिंग, क्लीनिंग एंड सर्विंग ओनली वन मैन शो, एक ही आदमी करता था, जानते फिर कौन है, कोई पुरुष नहीं है, कोई यंग नहीं है, कौन करता था मालूम है, सच्ची माता, विधवा वृद्ध, वृद्धा विधवा अकेली, उन्होंने बोली सब जाओ क्लास में, आप लोग क्लास नहीं मिस करना चाहिए। क्लास किसके बारे में हो रहा है, मेरे निमाय के बारे में, निमाय के बारे में मुझे क्या जानना है, मैं क्या नहीं जानता उनको, मैं खूब जानता हूं उनको, तो आप सब जाओ जानो, मैं कुकिंग करके खिलाऊंगा, ये मेरा जानना है, मेरे हाथ से मेरा निमाय खाएगा, तुप्त तो होकर के पागल होकर इधर घूमता रहा, जा करके कपड़ा उतार दिया, बाल उतार दिया, तो मैं थोड़ा सा खिलाऊं कुछ दिन तक खाए, तो इसलिए मैं अकेली बनाऊंगी, अकेली बनाकर खिलाऊंगी, आप जो सब चाहो सबको मैं खिलाऊंगी, तो अकेली वो चार्ज ले, किसी को उसने नहीं दिया ना, एवरीथिंग आई विल डू, परोसने तक। आप जानते हैं उसमें मिस्ट्री क्या है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अगर आप पर हित करना चाहते हैं, दूसरे सबको जगत में अशेष प्राणी है सबके मंगल करना चाहते हैं, मंगल करने के लिए परोपकार कार्य के लिए मनुष्य जीवन है, ये महत्वाकांक्षा लेकर आप चले, आप सबके मंगल करने जाएंगे कितने कर पाएंगे, आपका लाइफ स्पैन कितना है, 10-20-50 साल जिएंगे कि नहीं, एक एक कितने लोगों को मिलेंगे, अपने मर जाएंगे, अपने सबके पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, सबको मंगल कर ही नहीं सकते हैं, असंभव है, सबका डिमांड अलग अलग है, सबको मिलना अलग अलग मुश्किल है, और इतने लोग हैं आपको सबका जा भी नहीं सकता, तो कैसे मंगल करेंगे। तो जैसे कहा गया है एक विशाल वृक्ष है, विशाल वृक्ष में मिलियन से बिलियन पत्ता होता है ना, नहीं करोड़ों करोड़ों संख्या में पत्तल होते हैं, इतने ब्रांच शाखा प्रशाखा होता है, तो सभी को जल सेचन करना है तो इंजेक्शन लेकर सब पत्तल में पानी देते रहेंगे, फिर शाखा में पानी देंगे तो मर जाएंगे आपके बूढ़े को, तब भी नहीं बुरा हो पाएगा है ना नहीं। और कितना दिक्कत, सब सीढ़ी लगाकर सब पत्तल के पास आएंगे मर जाएंगे, तो जा ही नहीं पाएंगे, पहुंच ही नहीं पाएंगे और पानी दे भी नहीं पाएंगे, असंभव। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सब दिक्कत में न पड़कर सीधा जाके पेड़ के जड़ में पानी दे दे, तो ऑटोमेटिकली सारे छोटे बड़े फल फूल पत्ता शाखा प्रशाखा उपशाखा मूल शाखा सबको सिंचन हो गया है ना नहीं, कितना अच्छा काम। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार वृक्ष को सिंचाई करने के लिए वृक्ष के जड़, हम मनुष्य हमारे शरीर को प्रसन्न करने के लिए हमारे जड़ हमारे पेट में खाना दे दो सब सुखी हो जाएंगे है ना नहीं। हम सोचेंगे कि नहीं, हाथ बोलेगा सर दिन भर मैं काम कर रहा हूं, भाई बोल की तू देसी बली है, वो कुछ नहीं कर ले जी बम सोता रहता है फिट, कुछ काम नहीं कर रहा, कुछ कर रहा है पेट, आंख बोलता मैं देखता रहता हूँ, कान बोलता मैं सुनता हूँ, वो सुनता हूँ, खाता चुबाता है काम करता हूँ, पैर बोलता मैं ढो ढोकर धोलता हूँ सारे शरीर को, और वो बैठा रहता है मेरे ऊपर कुछ नहीं करता, महा आलसी है, उसको कुछ नहीं देना चाहिए। आलसी क्या था? लेजी है, तो उसको कुछ नहीं देंगे, सो हम काम करके कमाते हैं, उसको क्यों नहीं खिलाएंगे। तो बोले स्ट्राइक किए, आंदोलन आंदोलन के पेट बोला ठीक है जो करना मत दो आप खाओ, सब पकड़ करके अच्छे अच्छे आइटम को नाक में कान में आंख में मुख में हाथ में पैर में बांध कर रखने रखे, कितना दिन स्ट्राइक करेंगे, खुद मर गए स्ट्राइक करेंगे खुद भोग नहीं पाए मर गए है ना। तो इसी प्रकार अगर सभी को हम संतुष्ट करना चाहते हैं तो एक होता है उसका जड़ मूल, तो अगर वो संतुष्ट हो जाए ऑटोमेटिकली सब संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार पूरे जगत को कल्याण करना चाहते हैं, ये जगत का जड़ क्या है, ये जगत का भी एक जड़ है एक मूल है जिससे जगत वृक्ष निकला है, ये संसार वृक्ष का जो मूल है वो है जगत हिताय कृष्णाय, सारे जगत का हित करना चाहते हैं तो कृष्ण का हित करो, कृष्ण का हित करने से संपूर्ण जगत का हित हो जाएगा अपने आप, समझ में। कृष्ण जगत का जड़ है, अब प्रश्न उठेगा कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, कृष्ण का हित करेंगे जगत का हित हो जाए, कृष्ण का हित कैसे करें, तब श्लोक में बताते हैं कृष्ण का हित करने का तीन उपाय है, गो ब्राह्मण और देवता, ये तीन को हित करने से कृष्ण का हित होता है ना। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमनो, तो इसी प्रकार कृष्ण को करना चाहिए। तो सची माता जिसको प्रसन्न करना चाहती थी वो कौन है, निमाई मतलब है कौन, निमाई वही जगत का जड़ है ना, जस्मिनी तुष्टे जगत तुष्ट, उस प्रमाण पता है आपको, एक बार दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों के साथ गए थे, खाने के लिए बोल दिए कि बनाओ हम भूखा है अभी, स्नान करके आते हैं प्रसाद लेना है हमको, मालूम है ना अक्षय पात्र तो खत्म हो चुका था, अक्षय पात्र थे नहीं, तो स्त्री बोले द्रौपदी की बुलाओ, द्रौपदी बोला तो पात्र का महिमा खत्म, हम खा चुके हैं पात्र धोधा कर रख चुके हैं, कुछ है नहीं अब तो कुछ नहीं होगा ना, केवल 10,000 कैंडिडेट हैं ब्राह्मण, ऐसा नहीं है कि 10-20 हैं गेस्ट आ गए, ऐसा नहीं, केवल कितने गेस्ट हैं 10,000 ओनली, और सब खाने वाले भी हैं हाँ, डिवोटी लोग सब खाने वाले उस्ताद होते ना, तो दुर्वासा सब खाने वाले हैं, तो वे 10,000 हैं तो उनको तो देना पड़ा, तृप्ति करे कैसा के तो चिंता पड़े। तो कृष्णा ने कृष्ण को पुकारी, कृष्ण ने आए, कृष्ण आ करके थोड़े से एक पत्ता निकाल कर कहीं से खा लिए, क्योंकि वो खा लिए वो तुष्ट हो गए तो समस्त प्राणी जगत का तुष्ट हो गया। अब सुने ना एपिसोड, उनको यही से ढकार आया बोले अरे हम बोल कर रहे ही, वो अगर कुकिंग किए होंगे बेकार जाएगा, हम तो खा नहीं सकते भाई, मेरा तो इंडाइजेशन यहीं से शुरू हुआ भाई, मुझे किसका हजमला है तो दो भागे, हाँ वहीं से भागे। अब भीम जो दुष्मा बोले देखो लेट हो रहा है, बुला उनको, खाना कुछ नहीं है। अब भीम का आवाज है, बोली रे बाप रे बाप, एक दिन गलती किए थे, सुदर्शन सुदर्शन पीछे हिट दिया था, अब भागो भागो हेवी करंट, भाग गए सब। तो कृष्ण एक अगर तुष्ट हो जाएंगे, जितने सब तुष्ट हो जाएंगे, तो वही तो जो निमाय है कौन, ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत है सही बलराम, वही दोनों है, कोई अलग थोड़ी है। ड्रामा कर रहे हैं दोनों, है तो वही कृष्ण बलराम, रोल कर रहे हैं, है ना नहीं? तो उनको खिलाने के लिए अगर सची माता बड़े प्यार से केवल एक ही उनके लड़का को ढंग से बनाकर खिला दी, एक ही लड़का को खिलाने को कष्ट है क्या? आप कर जब दिया जाए, एक ही लड़का को भोजन करा दो, वो तो एक्सपर्ट कुक थी ही, तो बनाकर एक लड़के को खिला दो, कष्ट क्या है? तो एक को खिलाने से जानते हैं वही की पॉइंट है, अगर वो खा लेंगी, अगर वो खा लेगा निमाय, तो इतने हजारों संख्या भक्त है, सबका पेट ऑटोमेटिक पूर्ण हो जाए। सिंपल फॉर्मूला है, कहा है कि इतने सारे खरीदेगा, इतने बड़े बड़े हंडा, इतने सारे सारे गैस, इतने कुकिंग डिश परोसना, ये काय करे, जिसको फॉर्मूला मालूम है फॉर्मूला में क्या, तुरंत एक चीज आप लाओ तो सारे अपना संतुष्ट हो। जो भी हो, वो एक सेकंड इवेंट थी। फिर थर्ड इवेंट होता था, प्रसाद लेने के बाद में थोड़ा सा स्वल्प आराम करते थे लोग, विश्राम करते थे, विश्राम करने के बाद संध्या आरती होता था, संध्या आरती के बाद में फिर दूसरा इवेंट शुरू होता, तृतीय भाग शुरू होता था उत्सव का, वो था कीर्तन और नृत्य। तो पूरा उत्सव में तीन भाग हुआ करता था, प्रथम भाग कथा कीर्तन, फिर भोग प्रसाद, फिर नृत्य कीर्तन, बस यही तीन ही होता है मुख्य उत्सव का अंग, वही तीन रूप में उत्सव करते थे, 24 आवर चलता था, हाँ कई दिन तक चला। तो उसके बाद में महाप्रभु फिर तो सची माता परमिशन दिए थे, वो फिर निकल गए पुरी, पुरी जाते समय जाते जाते जब रास्ता में ओडिशा बॉर्डर पार करके और सुवर्ण रेखा में स्नान करके आगे गए जड़ेश्वर के बाद बालेश्वर पहुंचे, बालेश्वर में वो नाम सुने थे पहले खीरेश्वर गोपीनाथ का, उसी मंदिर में गए, और गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ जी के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जो दिव्य आनंद अनुभव किए, सुंदर नृत्य कीर्तन किए, करने के बाद प्रसाद पा करके महाप्रभु स्वयं अपने साथ जो परिकर थे उनको स्वयं अपने मुख से इस कथा का वर्णन कर रहे हैं, जिस कथा को हम आलोचना करने के लिए प्रयास करेंगे। इस कथा के मुख्य वक्ता कौन है? श्रीमन गौरांग महाप्रभु स्वयं। और किसको बोल रहे हैं? नित्यानंद जगदानंद गोविंद मुकुंद, ये सब आनंद को, कोई निरानंद नहीं, निरानंद नहीं, सब आनंद, नित्य आनंद जगत आनंद मुकुंद आनंद मुक्त आनंद गोविंद आनंद, सब आनंद, सब उनके परिकर थे, सारे आनंद वाले। तो उनको ये आनंद में कथा कहा करते थे महाप्रभु स्वयं, और बड़े पंचमुख हो करके, बहुत खुश हो करके अपने दादा गुरु का महिमा वर्णन करते थे। वो कैसे थे? बोलते मेरे गुरुजी के गुरुजी ऐसा थे जिनके कारण ये ठाकुर आपने नाम अमेंडमेंट कर दिए। अमेंडमेंट समझते ना, जैसे कभी कभी आपका नाम का मिस्टेक हो जाता है तो फिर अब एफिडेविट करके अमेंडमेंट करके फिर सर्टिफाई करने फिर अब करेक्शन होता है। तो भगवान ने आपके नाम को करेक्शन किए, करेक्शन किए ना, गलती किए, करेक्शन किए, चोर संज्ञा लगाए। बोलते कि सादा गोपीनाथ थे फिर चोर गोपीनाथ बने बाद में, ये करेक्शन किए। तो भगवान ने अपने आप को जिसके कारण चोर बना दिए, कौन सा ऐसा भक्त है जिसके लिए भगवान चोर बने, चोरी करना पड़ा? तो इस भक्त के कथा को कहने के लिए महाप्रभु बोलना शुरू किए, महाप्रभु बोलना शुरू किए। अनेक दिन पहले की बात है, मेरे गुरुजी के गुरुजी ईश्वरपुरी जी के गुरुजी माधवेंद्र पुरीपाद, उन्होंने एक अजाचित वृत्ति के संत थे, अजाचित वृत्ति मतलब जाचना नहीं करते हैं, जाचना मतलब मांगना। माधवेंद्र पुरी का एक नियम था कि किसी को किसी भी द्रव्य के लिए किसी भी समय में कभी नहीं मांगेंगे। आया समझ में? किसी प्रकार के वस्तु के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं मांगना, लेकिन कोई अगर लाकर कुछ उनको दे उसको मना भी नहीं करते थे, स्वीकार करते थे। कोई लाकर अपने आप दिया तो ले लेते थे, लेकिन मांगेंगे नहीं कि उसको भले भूखा मर जाए, भूखा मर भी जाए लेकिन किसी को कुछ नहीं मांगेंगे। जो आकर कुछ दिया तो लिए, नहीं तो नहीं। और एक दूसरा नियम था, वो जीवन भर अन्न नहीं ग्रहण करते थे, फल भी नहीं ग्रहण करते थे, केवल क्या खाते थे? दुग्धहारी बाबा थे, केवल दूध खाते थे। तो उन्होंने भारत में सारे तीर्थ प्रजन घूमते थे, भ्रमण करते थे, कृष्ण प्रेम में विभोर रहते थे। नित्यानंद प्रभु के साथ उनका मिलन हुआ था पंडरपुर में, तो बड़े रसिक भक्त थे माधवनपुरी। घूमते फिरते एक बार वृंदावन आके पहुंचे, बहुत पहले की बात है, महाप्रभु से और 100 साल पहले की बात है। तो वृंदावन पहुंचे, वृंदावन में जमुना जी के दर्शन किए, काली नदी के स्नान किए, वृंदावन परिक्रमा किए, तो फिर गोवर्धन गए। हम जैसे टेम्पो में कि बस में नहीं गए, तब तो गाड़ी घोड़ा था ही नहीं, पैदल में चल करके, फिर पैदल में चप्पल ही नहीं होता होगा, कि इतना सारे वस्त्र बढ़िया बढ़िया नहीं होगा, जैसे भी कैसे पहन करके पैदल में चल करके वृंदावन से गोवर्धन केवल 29 किलोमीटर गए। अब जा करके अजा चक्रवर्ती किसी कुछ मांगेंगे तो है नहीं, सुबह से कुछ खाए नहीं, मिले तो खाए नहीं खाए, और मिलेगा दूसरा चीज मिलेगा तो कुछ खाए नहीं, केवल दूध मिलेगा। तो और दूध भी कोई जानता है कि बाबा दूध पीने वाला है, कोई दूसरी वस्तु दे दिया तो उसको भी नहीं खाएंगे, और किसी को मांगेंगे नहीं, मैं केवल दूध खाता हूँ दूसरा चीज खाता हूँ, यही बात कह दो कम से कम, ये भी किसी को नहीं बोलेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा मिले जो उनको समझ पाए कि बाबा और दूसरा कुछ खाता ही नहीं, कोई आकर फल मूल अन्न बढ़िया सा राजभोग लाकर दे दे तो बाबा इसको नहीं खाएंगे, क्योंकि बाबा का नियम है केवल दूध पियेंगे। तो इसलिए अगर कोई दे सेवा भी करे तब भी काम नहीं बनेगा, उनके मन को जानना पड़ेगा कि वो कैसे बाबा चाहते हैं। वो किसी कुछ बोलेंगे भी नहीं, किसी बोले नहीं तो किसी पता कैसे चलेगा, कोई पता कर सकता है? भाई जिसको सेवा करेंगे वो अगर नहीं बताएंगे क्या चीज मुझे पसंद है तो आप कैसे पता चलेगा, और क्या देंगे वो नहीं लेंगे तब कोई पड़ा रहेगा आपको बेकार जाएगा। तो बड़ा उठपट है ना सेवा करने का, ऐसे साधु कैसे सेवा करें? आप बढ़िया सा फल लाकर आम लाकर खरीद के देंगे, बढ़िया सा आइसक्रीम लाकर देंगे, और क्या क्या जो अपना जो प्रसाद होता है इस प्रकार पिज्जा पास्ता क्या क्या सब लाकर देंगे, और तो ऐसे कुछ खाएंगे नहीं, फल मूल कुछ भी नहीं खाएंगे, वो तो केवल गव्य प्रसाद केवल दूध लेते हैं, और वो दूध केवल लेते हैं करिए किसी को भी बताएंगे नहीं, मैं केवल दूध हर खाता हूँ मुझे और मत कुछ दीजिए, अगर देना हाथ दूध दीजिए, ये बात भी नहीं किसी को बोलेंगे, किसी को कभी नहीं बोलेंगे कि मुझे कुछ चाहिए करे दूध के बाद, तो कभी नहीं बोलेंगे। फिर तो पता भी किसी किसी चलेगा कोई ला कर देगा, लेकिन पता जिसको चलना चाहिए इसको तो चल रहा है। तो चल के गए, इतने थक गए थे, वृद्ध भक्त थे, जा करके पैदल में चलते चलते जा करके भूखे प्यासे जा करके गोवर्धन जी को राधा कुंड के स्नान किए, श्याम कुंड के स्नान किए, फिर परिक्रमा शुरू किए। पूरे गोवर्धन के 25 किलोमीटर परिक्रमा लगाई, लगा कर गोविंद कुंड के पास जाकर पहुंचे, पहुंच करके दोबारा स्नान किए, तब शाम हो चुका था लगभग, सूर्य अस्त होने वाले ही थे। उस समय स्नान करके पूरे क्लांत शांत हो चुके थे, इतने थक चुके थे, वृंदावन से चलते चलते जा गए 29 किलोमीटर, उसके बाद परिक्रमा वो भी चलना ही तो है ना, तो कितना किलोमीटर चलना हुआ? 50, केवल 25 प्लस 29, हाँ 54 किलोमीटर केवल। एक बार करके टेस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखो कैसा लगता है, और उस दिन सुबह से नहीं खाओ और वो भी पता चले ग्रेन्स नहीं खाना आज हम तो जिस दिन ग्रेन्स नहीं खाते चकाचक फिस्ट होता है उस दिन एकादशी का, ग्रेन्स का बाप भी हार जाएगा ग्रेन्स क्या हाँ हमारे इस्कन वाले एकादशी के दिन ऐसे ऐसे आइटम बनाते हैं, ग्रेन्स को शर्म लगता है, मैं कहा को ग्रेन्स बना, मेरे से तो इतना आइटम बन ही नहीं पाता एकादशी में, 108 आइटम हाँ ग्रेन को इतने शर्म लगता है, मैं कहा कि ग्रेन से बना मेरे से तो इतना आइटम बन ही नहीं पाएगा तो ये भक्त इतने चतुर है, नॉन ग्रेन्स में ग्रेन्स आता है बोलते फालतू का मैं रखा है उपवास है ना नहीं, लेकिन वो इसे फलाहार के इस प्रकार एकादशी आहार नहीं करते थे, केवल विशुद्ध दुग्ध आहार, वो भी किसी को नहीं बताए। फिर तो गए क्लांत श्रांत हो करके, अब संध्या उपगत, अब सूर्य अस्तगामी होने जा रहे हैं, तो वृद्ध व्यक्ति बेचारे थक करके गोविंद कुंड में स्नान किए परिक्रमा के बाद में, और स्नान करके कोई ज्यादा गमछा कपड़ा इतना बैग में भरकर नहीं, बैग तो उनका था नहीं, एक गमछा उसी में स्नान करके उसी में गिलास से बैठ गए पेड़ के नीचे बैठ करके। दूसरा तो कुछ है ही नहीं, ना दूसरा वस्त्र है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना किताब है, ना बक्सा है, ना कोई लैपटॉप है, ना कैमरा है, ना मोबाइल है, कुछ नहीं। तो क्या उनके पास एक ही अस्त्र होता, क्या? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, वही नंबर डायल करें, है ना? नहीं तो नंबर घुमाते रहे घुमाते रहे, मिस्कल हो जाता बहुत बार, कभी तो लग जाए, तो वही नंबर लगाते रहे बैठे बैठे, तो कल लगाते रहे, कभी ना कभी तो कल लग ही जाता है। तो देखे शाम के समय एक लड़का आया, बड़े देखने में डौल डौल सुंदर, उनका शरीर इतने सुंदर था, नख से सिख तक देखने बनता था, बड़ा सांवला सा छोटा सा लड़का था, और हाथ में एक मिट्टी का बर्तन लिया था मटका, और ला करके पहुंचा, बाबा नाम कर रहा है, बोले बाबा ए बाबा, बूढ़ा बाबा क्यों ढीट कर ढीट कर बैठा हुआ है? माधवन पुल देखे, किसको बोल रहा है? मुझे, हाँ हाँ तुझे बोल रहा हूं। क्या रे बेटा, क्या लाला, क्या बात है, तू इधर बैठा बिना खाए क्यों, खाता क्यों नहीं है? हमारा गांव में जो आता है सब खाते हैं, हाँ? अगर सर्वतक मांग कर खा लो, अगर तेरे जैसे ढीठ कोई आ जाए मांग कर भी नहीं खाए तो उसके लिए मुझे लाकर खिलाना पड़ेगा, सारा दुनिया को तो मैं खिलाता हूं, तो क्या करूं, तो तेरे लिए मुझे लाना पड़ेगा। तू ढीठ कहीं के मांगता नहीं, किसी को बोलता नहीं, तो लो दूध पी लो जल्दी। माधवन पुल मुझे ये बच्चा आकर के मिसना डांटता है भाई, मैं क्या दोष किया उनका, हाँ शाम शाम को इतने गाली चढ़ाते मुझे आकर के, परिक्रमा करके आया स्नान करके बैठ के नाम करता, मैं तो किसी कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा हूँ। तो माधवन माधवन बोले क्यों मोर पर बरस पड़ा भाई, क्या बात भाई? तो उनको बोले ए लाला तुझे पता कैसे चला कि मैं तो तुझे बोला नहीं कि भूखा हूं करके, मुझे दूध चाहिए कि क्या चाहिए, तुझे कैसे पता चला? नहीं तो बोलना, तू बताता नहीं ढीठ, पता कैसे चला? बताता होता तो कोई ला करके रोटी छाछ दे दिया होता। आप अभी भी जाइए ब्रज में, तभी से ये नियम है, कभी कुछ भिखारी जाए को मांगे तो रोटी देंगे, छाछ दे देंगे, थोड़े बहुत और कुछ सब्जी दे देंगे, दूध नहीं देंगे। लेकिन ये अद्भुत ब्रजवासी है, रोटी छाछ नहीं लाया, दूध ही लाया, हाँ असली है ना वो। तो बाबा पूछे कि लाला मैं तो नहीं बताया था भूखा हूं कर, तुझे कैसे पता चला मैं भूखा हूं करके? ना मुझे थोड़ी पता था। लाला को लगा कि बूढ़ा पकड़ लगा, मुझे लगता ये बहुत चाले मुझे इसे इंटरव्यू ले रहा है मेरा, देखा तो ये देख मैं इंटरव्यू लेने लगा। माधवपुरी देखे तो केवल लाला कैसे पता चला ही नहीं, पांच प्रश्न कर दिए उनको, लाला तुझे कैसे पता चला मैं भूखा हूं, लेकिन पहले बताओ तेरा नाम क्या है, तेरे घर कहाँ है, तू क्या करता है, इधर क्यों आया, और कैसे पता चला मैं फास्टिंग किया हूं करके, ये इतना सारे प्रश्न कर दिए उनको। तो लाला सोचने लगा हो ना हो इतने सारे इंटरव्यू ब्यौरा पूछता है, कोई तलाश तो नहीं ले, पकड़ तो नहीं करेगा कोई, जैसे कोई आप द्रव्य कोई छिपा कर लेना चाहते हैं और जो पास करते हैं ना इमिग्रेशन में, तो इंटरव्यू वाला ज्यादा क्वेश्चन में आप जल्दी तत्व कैसे निकल जाओ यहाँ से, यहाँ से बाहर निकल गया तो गया, तो इसे वो इमिग्रेशन का फेस कर रहा है, जैसे लाला ने बोलता जल्दी उनको दूध देकर खर्च निकल जाए यहाँ से कि पता ना चले किसको, लेकिन बाबा तो पहले पूछने लगा, तो उनको सारे प्रश्न का उत्तर देना है, तो एक एक करके फटाफट उत्तर देने लगा। बोला नहीं बाबा मेरा नाम तो गोपाल है, ये पास में गाँव देखता ना, गाँव के निवासी हूँ, गाँव के रहने वाला हूँ, इसी गाँव के रहने वाला हूँ, नाम मेरा गोपाल है, और मुझे थोड़ी पता था, मैं तो गाय चराने वाला ग्वाला हूँ, मैं गाय लेकर जंगल में गया था, मैं गाय चला कर अभी शाम को घर में वापस आया, और गांव के सब स्त्री लोग आए थे गोविंद कुंड से पानी लेकर गए, वो पानी लेते समय देखे थे, वो जाकर मुझे बोले लाला वो बाबा बैठा है ढीठ, अब खाया नहीं पिया नहीं भूखा बैठा है, और जाकर के थोड़ा दूध दे दो उनको, तो इसलिए मैं तो उनका ऑर्डर कैरियर हूँ, मुझे क्या पता है, उन लोग ने मुझे भेजे हैं दूध दे करके, मैं उनका आदेश वाहक बन करके दूध लेकर आया हूँ, तो ऐसा करो तो दूध ले लो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे गाय दूध नहा ला करके, मैं आकर बाद में बर्तन ले लूंगा। मैं गया दूध पत्र बढ़ा करके भाग गए, बोले यार ज्यादा रहने से फिर कोई गड़बड़ी है ना, नहीं ज्यादा प्रश्न प्रश्न पूछेगा तो भाग गए, पात्र उनको देके चले गए, चले गए। अब तो सामने सामने बूढ़ा देख रहे थे, बात कर रहे थे, सामने में जितने सुंदर सावली रूप था, जब घूम करके गए तो उनके पीछे तरफ भी कुछ कम सुंदर नहीं था, बैक साइड जितना था, फ्रंट साइड जितना, बैक साइड भी इतना सुंदर था। हाँ? भगवान के आगे पीछे साइड जो भी देखो सुंदर ही सुंदर है। तो माधवेंद्रपुरी वृद्ध सोचने लगे कि क्या ये लड़का सही में गांव का है, साधारण एक वाला लड़का है ना, और कोई है, उनका रूप जैसा अनन्य सुंदर है, अति आश्चर्यमय है, अति आकर्षक दिखता है, और वाणी तो तत्वधिक अमृत जिनी वाणी, इतनी सुंदर मीठा वाणी व्यवहार, क्या हो ना हो मेरे ठाकुर तो नहीं है, क्या मेरे ठाकुर आया, मेरे सामने खड़ा हुआ, मेरे से बातचीत किया, मैं उसे इंटरव्यू किया, लेकिन पता नहीं लगा पाया, धीक है मेरा बाबा जीपन को, मैं कहा कि सोचता हूं कोई इतने बड़े एडवांस हूं, जब मेरे ही आराध्य थे, मेरे सामने आया, मेरे से बातचीत किया, मैं उसको पहचान ही नहीं पाया, है ना। नहीं आपके इंचार्ज आपके सामने आएंगे, आप डांट फूट करके बातचीत करके कोई सेवा देकर चले जाएंगे, आप पता नहीं लगे कौन आए थे, तो मैं कैसा मैं उनके भक्त हूं, इंचार्ज को पहचान ही नहीं पाया, ऐसा ना। तो माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, बोले क्या ऐसा तो सही में नहीं हुआ, अगर ऐसा हो तो इस बार तो आएगा बर्तन लेने के लिए, तो अभी तो छोड़ूंगा नहीं, इस बार तो पक्का लेना है, इस बार पक्का उनका हिसाब किताब करना है, नहीं छोड़ूंगा इस बार। तो ये मन में सोचे, सोच के बोले चलो, बहुत भूख तो लग रही है, थकान भी बहुत है, दूध मिला तो सही पी लूं। तो मन में सोचे ये बालक को कैसे पता चला, ब्रज में तो बहुत लोग आते हैं, रोटी मोटी देते हैं खाने के लिए, मधुकर दूध ही क्यों लेकर आया, है ना। नहीं ब्रज में जितने भी ब्रजवासी माताजी ब्रज में किसी को लोगों की भूखा है, कुछ पड़ा है, तो रोटी ले देंगे, थोड़ा छाछ दे देंगे, थोड़ा मक्खन दे देंगे, ऐसा कुछ दे देंगे खाने के लिए, लेकिन दूध ही लेकर आया और कुछ नहीं लेकर आया, मतलब उनको पता है कि बूढ़ा दूध के बिना कुछ खाता ही नहीं, ये बात कैसे पता चले, मुझे किसी को नहीं बताया इस बात को, तो मतलब कुछ ना कुछ तो काले है घटना के पीछे, ये इतना कैसे पता चल गया कि बाबा केवल दूध पीने वाला दूध ही लेकर आया उन्होंने। चलो जो भी हो, जब दूध को लेकर बोले भूख तो लग रहा है पी लें, दूध को लेकर जब पीने लगे, ओ अभी तक तो जन्म से अभी तक तो दूसरा कुछ खाए नहीं, उन्होंने तो केवल दूध ही पीकर रुके हैं, उनका जीवन केवल दुग्धारी थे, केवल दूध ही पीते थे, हर डेली प्रतिदिन दूध पीते हैं, कितने बढ़िया बढ़िया कितने परिमाण दूध पिए हैं, लेकिन आज ऐसे पात्र को लेकर के जो मुंह में लगा दूध पिए, आज वो टेस्ट था, ये तो कुछ अनोखा था। अब इतने जिंदगी में जितने बार दूध पिए हैं, ये सारा टेस्ट ये कुछ विचित्र था, उस पी करके तो उनको लगा कि ये तो ये दुनिया में ये दूध हो ही नहीं सकता, इस धरती में ऐसा कोई गाय नहीं है कि जिसका ऐसा दूध हो। सही बात है, ये गाय तो धरती को थे नहीं, ये तो उनका गाय है, उनके दूध है, तो उनको तो डाउट सा होने लगा ये क्या है, और डाउट थोड़ा मन में जो था और सोगना और बढ़ गया, तो बड़े उत्साह से उमंग से रहे, बोले अभी तो आएगा, इस बार पकड़ूंगा, ये छोड़ूंगा नहीं, बात है पकड़ करके पूरा हिसाब निकाल लूंगा उनका, आएगा ये आशा रख करके मटका को हाथ में पकड़ करके बैठे रहे, आएगा किसे लेने के लिए, लेकिन लड़का आया कहां, शाम हो गया, 6 बजने लगा, 7 बजने लगा, 8 बजने लगा, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 लेट नाइट हो गया, सब सो गए, तब भी नहीं आ रहे, बोला क्या ठग के चला गया क्या, अच्छा लड़का था, ठग भी था क्या, मुझे बर्तन पकड़ा कर भाग गया, आए नहीं रहा, लेकिन वो ठग ऐसे ठग है, जब फिर देखा लेट नाइट 12 बजा मध्य रात तब भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा झपकी छान लगे, थोड़ा विश्राम करके वहीं, कोई बेडशीट था नहीं, मेज मैंने तकिया चादर खट तखत फकत पलंग मच्छरदानी ऐसा कुछ नहीं था, वहीं पेड़ के नीचे वही आधा गीला कपड़ा पहन करके वहीं लेट गए चट्टान के ऊपर, वहीं उनका रात्रि विश्राम हो गया। जब विश्राम किए, जो लड़का अभी आने वाला था वो नहा करके नींद में आने लगा, स्वप्न में आने लगा, आकर बोला माधवेंद्र एम क्यों चलो मेरे साथ, उनका हाथ को पकड़ खींचा, अभी बर्तन नहीं खींचा, बर्तन तो नहीं रह गया, अभी उनको पकड़कर खींचा, हाथ पकड़कर खींचा, चल मेरे साथ, मैं कितने दिन से इधर पड़ा हुआ हूँ, खाया नहीं पिया नहीं नहाया नहीं, कितने कष्ट कितने दुख में भोग रहा हूँ, कभी से मैं बाट देख रहा हूँ, कभी मेरा माधवेंद्रपुरी आएगा, कभी मेरा माधवेंद्र आएगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा नहलाएगा, इसके लिए मैं कभी देख रहा हूँ। देखिए अभी 3-4 घंटा पहले वो ठाकुर क्या बोल रहा था, सारे दुनिया को मैंने खिला रहा हूँ, अब क्या बोल रहा है, कई दिन से मैं खाया नहीं भूखा पड़ा, सब दुनिया को मैं ही खिलाता हूँ लेकिन मैं नहीं खाया, मुझे सही में सारे दुनिया के पालनहार वही है लेकिन उनको कौन खिलाता है, उनको वो खुद नहीं खाते हैं, जानते ना नहीं, खिलाने से खाते हैं, हम लोग को सब तो खिलाने से नहीं, हम खुद खाते हैं, यही दोष है, हम खुद खा जाते हैं लेकिन वो खुद नहीं खाते हैं, कोई खिलाए तब खाए, तो बोलते हैं सारे दुनिया को मैं खिलाता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं खिलाता, मैं खाया नहीं फास्टिंग रहा हूं, तो माधवेंद्रपुरी कब आएगा मुझे खिलाएगा। तो उनके हाथ को पकड़कर खींच के ले गए और लेकर के एक झाड़ी था पास में वहां ले गए, लेकर के बोले देखो उसके नीचे मिट्टी के नीचे मैं पड़ा हूँ, कई वर्षों हो गया, कैसे आप इधर पड़े हैं ना ऐसे, अरे श्री कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ था, उन्होंने जो मथुरा के राजा बना तब उन्होंने प्रतिष्ठा किया था मुझे, इस ब्रज के वास्तविक अधिकारी तो मैं ही हूँ, ठाकुर तो मैं ही हूँ, मुझे प्रतिष्ठा किया था, लेकिन समय के इसके अनुसार एक बार मुगल आक्रमण होने लगा तो पुजारियों ने पठान लोगों के भय से छिप करके और मुझे ले आए नीचे गोधन पहाड़ के नीचे ला करके और यहाँ झाड़ के नीचे फेंक कर उसे भाग गए, तब से मैं पड़ा हूँ बस, ना कि पूजाना अर्चना ना कोई देखना कुछ नहीं, तो आप आ करके मुझे जल्दी उद्धार करो, मैं इसी एरिया का असली मालिक हूँ, तो मुझे सब ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो सब बताओ। तो माधवेंद्रपुरी तब तो सो गए थे सुबह सुबह, बोले सुबह का स्वप्न सच्चाई होता है, तो उठे उठ के देखते तो मंगल आरती का टाइम हो गया है, स्नान किए जो भी करे बत्ती लगा करके, अब जब उन्होंने अपने कार्यक्रम किए और थोड़ा देखे इधर उधर, बोले अरे स्वप्न में तुमने यही देखा था, यही पेड़ देखा था, यही झाड़ी देखा था, बिल्कुल सही है, क्या सच बात है, अच्छा तो फिर टेस्ट करके देखा जाए। तो सुबह हुआ तो उठ करके कुछ गांव के लोगों को बुलाए, बोले कि भाई देखो आपके गांव के असली अधिकारी इधर ही हैं, आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। तो कुछ गांव लोग बोले कि बाबा होगा कोई सिद्ध बाबा शायद हो सकता है, चलो थोड़ा देखते हैं क्या घटना है। तो कुछ लोग इकट्ठा हो गए, बोले नहीं ऐसे नहीं, आप हाथ में सब कुदाल और गैंती सब लेकर के आओ, सब खुदाई करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर के आए और ला करके झाड़ी साफ करके जब खुदाई करने लगे तो थोड़ी सी भी खुदाई किए नहीं तो जो विग्रह गोपाल विग्रह देख रहे हैं वो प्रकट हो गए। तो उसको देख कर तो जो लड़के लोग इतने प्रसन्न हो गए और ब्रज में गांव में जाकर पूरा हल्ला ही कर दिए, बोले ये तो सिद्ध बाबा है सख्या सिद्ध बाबा, तो बोला और पकड़ करवा दिया, घंटों भी नहीं लगा ठाकुर जी पकड़ करवा दिया। तो इस बात को सुनकर के पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए, हाँ हाँ बाबा आप तो बड़ा सिद्ध है ठाकुर जी पकड़े, अब क्या करें क्या करें, ऐसा करो कुछ मन में लोग आओ उनको ठाकुर जी उठाकर लेकर जाएंगे गिरिराज जी के पहाड़ के ऊपर रखवाएंगे। तो आगे बड़े बड़े लोग उठा के लेकर के गिरिराज जी के ऊपर रखे और वहां रख करके बोला अब क्या करें बाबा, ना अब अभिषेक करवाना है, कैसे ना जाओ देख के जो पट मेकर है, जिसको बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, इसका घर में जितने नए घड़ा है, नया पट है, सब ले आओ। सॉरी मैं एक्चुअली थोड़ा आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड आई थिंक, कभी मिस्टेक हो सकता है बोलने में, आई एम फीलिंग माई सेल्फ ओवरलोडेड। एनी वे तो फिर बोले कि जितने सब नए घट ले आओ जा करके, तो सब नए घट लाए, फिर ना गोविंद कुंड से ला करके छान करके पानी ले आओ, और किसका घर में कोई चंदन है, अतर है, तेल है, सुगंधित द्रव्य है, सब लेकर के आओ। उसके बाद ये स्नान कराया जाएगा, तो उसके बाद में बाल भोग लगेगा। क्या किसका घर में दूध का बनाया हुआ जो भी प्रोडक्ट हो, दही दूध छेना मक्खन जो भी मिल्क प्रोडक्ट है सब लेकर आ जाओ, लेकर आए। उसके बाद के नए नए वस्त्र कहीं हैं तो लाओ, श्रृंगार होगा, फूल चंदन माला बढ़िया से लगा करके फिर राजभोग होगा। सब विधि विधान माधवनपुर ने बताए, और पूरे गांव वाले मिलकर के खूब जोर से लग कर करने लगे इसे। अब बहुत बड़े उत्सव होने लगा। देखिए माधवनपुर कैसा लोग थे, अजाचक संत, हाथ में एक नया पैसा भी नहीं है, नॉट इवन वन रूपी, एक नया पैसा नहीं, कब्रधक शून्य, नो अकाउंट, नो मोबाइल, नो मनी, नथिंग, कोई ब्याग भाग कुछ भी नहीं था उनके पास, ना किसी को बुलाए, मीटिंग किए, थोड़ा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए, कुछ एडवर्टाइज किए, कुछ फेस्टिवल के लिए कहीं थोड़ा मीटिंग करना है, बड़ा उत्सव आता है, कोई व्यवस्था ऐसा कुछ प्लानिंग ऐसा कुछ नहीं किया। जस्ट आज सुबह ठाकुर जी को उठाए, कुछ लोगों को बोले कि ऐसा ऐसा करना है, आज ही इस प्लान किया गया और उत्सव आज ही हुआ। दोपहर तक कविराज गोस्वामी कहते हैं कि 20 लोग तो भात बनाने लगे थे, कितने 20 लोग कंटिन्यूअस कल भात बनाकर रखते थे, और राशि राशि संख्या में चपाती बनने लगा, और कई प्रकार के सूप साग, मतलब दाल साग और सब्जी कन बनने लगा, हजारों संख्या में लोग प्रसाद लेने लगे, आवाड़ वृद्ध वनिता। तो ये एक विचार करने की बात है, माधवेंद्रपुरी अकेले व्यक्ति है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई पहले से व्यवस्था नहीं है, सूचना नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट इन वन डे विदाउट एनी नोटिस इतने बड़े सक्सेसफुल फेस्टिवल उन्होंने कंप्लीट किए। अभिषेक, तैलमर्दन, श्रृंगार, बाल भोग, आरती और विशाल भंडारा, इतने बड़े महोत्सव, गिरिराज महोत्सव कर दिए, सब संपन्न भाव से, कोई निर्मूल भाव से, इतने बढ़िया बड़े रकम से हो गया। तो हम लोग हमारा मंदिर में करते हैं, 2 महीना पहले तो मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद कई डिपार्टमेंट होगा, एक एक सब दायित्व लेंगे, फिर फंड रेजिंग करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, मीडिया क्या क्या करते हैं, वो एंड में सारे झगड़ा करते हैं, बेकार हो गया, तुम ठीक नहीं करते, ठीक नहीं है। लेकिन यहां देखिए, नो मीटिंग, नो एडवर्टाइजिंग, नो फंड रेजिंग, नो ड्यूटी, नथिंग, सिंगल हैंडेडली सच ए सक्सेसफुल फेस्टिवल, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपुल टुक प्रसाद, कोई किसी को कुकिंग करने वाला, हलवाई बुलाना, ये लाओ बताना, कुछ भी नहीं किए, वहीं खड़े खड़े बिल्कुल पकड़ राम गिरधारी, इतने सुंदर बढ़िया सा फेस्टिवल बन गया। ये है भगवत इच्छा, तो भगवत इच्छा के अनुसार हम काम करें तो सब कुछ पूर्ण सफल होकर के निकलेगा। भगवत इच्छा छोड़ करके अपना इच्छा से बुद्धि से लगा करेंगे, सारे फेलियर ही फेलियर होगा। तो फेस्टिवल केवल एक दिन के लिए नहीं किए, जब उस दिन फेस्टिवल हो गया इतने बढ़िया सा, शाम हो गया, सब खा पी करके गए, दूसरे गांव के लोग इकट्ठा होते देखे, देख करके आके गए बाबा जी के पास, पहुंच गए शाम को, बाबा ये आपने ठीक ने नहीं किया, ठीक नहीं किया, ना क्या ठीक नहीं किया, नहीं तुमने क्या किया, उस गांव वाला को पूरा भंडारा खिलाया, सब कुछ किया, वो किया, हमारे गाँव वाला क्यों नहीं किया, तो ये तो ठीक नहीं, हमारे गाँव को भी करना पड़ेगा भाई, क्या ना हमको बताओ, हम कॉल करेंगे, लिस्ट बताओ क्या क्या लाएं, तो सारे लिस्ट बताया, और दूसरे गांव वाला दूसरे दिन आके पहुंचे, ओ विशाल कंपटीशन, हम तुम्हारे से ज्यादा करेंगे, तुम 20 लोग भात बनाए थे, हम 30 बनाएंगे। लो ऐसे होता ना, कंपटीशन होता। अब तीसरे गांव वाला तीसरे दिन आके पहुंचे, चौथे पहुंचे, यही से तो 2 साल तक एवरी डे ह्यूज फेस्टिवल, एवरी डे प्रैक्टिकली। और केवल फेस्टिवल एवरी डे होने नहीं लगा, 2 साल के अंदर तो कबीराज गोस्वामी कहते हैं बूढ़ा माधवेंद्रपुरी जी के, वो तो महा महावैरागी थे, कुछ भी नहीं था उनके पास में। 2 साल के बाद में उनके इसी समझता था, वो तो जैसे को जैसे थे, मंदिर बन चुका था बढ़िया सा, कोई सेठ साहूकार आकर गोवर्धन के मंदिर निर्माण करते, बड़े से पत्थर का बड़ा सुंदर मंदिर बन गया था, सिंहासन बन गया था, दरवाजा बन गया था, जगमोहन अल्टर किचन रूम सब बन गया था, गौशाला, क्योंकि ये बूढ़ा हमारा गाय का दूध पीता है और गोपाल को भी गाय के दूध का आइटम भोग लगाता है। बोलते हैं कि कई हजारों संख्या में गाय, अच्छे क्वालिटी के गाय, ये थर्ड क्लास गाय नहीं जिसका नाम गाय है, अच्छे क्वालिटी के गाय हजारों संख्या में गौशाला में रख दिया गया था। गिरिराज जी के नाम से गौशाला है, वो ब्रज के लोग बाबा से दीक्षा लेकर के सेवा में लगे हुए थे, गौशाला आदि से गाँव में गौशाला के, तो कौन से क्विंटल हिसाब से दूध आता आ करता था गौशाला से फिर दूध का, और दूध का लस्सी, दूध का आइटम जो भी बनाना, और क्या बोल रहा था भाई, हाँ गौशाला उनके नाम से, इतने बड़े बड़े गौशाला, हजारों संख्या में गाय और मंदिर, और कम से कम नहीं तो कई सैकड़ों शिष्य बन गए थे उनका, और इतने बड़े मंदिर और उनका नाम से जमी जमा, इतने सारे जमी बाड़ी आ गया, गेहूं के खेती, गन्ना के खेती, धान के खेती, वो इतने सारे, मतलब छोटे मोटे टेम्पल नहीं, अमर जैसे बर्तन इसका टेम्पल जिस प्रकार प्रॉपर्टी, वो विशाल कारोबार, बहुत बड़ा मठ, महंत कारोबार, इतने लाखों की प्रॉपर्टी, लाखों की कारोबार। अब कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई टेम्पल कमांडर नहीं है, कोई टेम्पल रूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही मंदिर गोपाल जी के, सब कुछ अलग, विशाल कारोबार, नो डिपार्टमेंट, नो डिपार्टमेंट हेड, एक ही बूढ़ा फरकट राम गिरधारी वास। इस सब चल 2 साल तक चल रहा, लेकिन बाबा जी की तो बहुत व्यस्त रहना पड़ेगा ना भाई, गायों की देखभाल करना, दूध ये करो वो करो, फेस्टिवल भाई जैसे भी कहो भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन बिजी तो रहना पड़ता, सबको बताना पड़ता है भाई तू ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, इसमें बिजी रहे तो भजन कैसे होए। ये तो बेचारे महाभजनानंदी थे, कहाँ ठाकुर जी ने उनको फंसा दिया बेचारे। मन में बड़े सोचते होंगे, जानते हैं जो असली महात्मा होते हैं उनका दुख कहाँ रहता है, वो सुख तो बहुत पाते हैं ठाकुर जी की सेवा करके, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं कि मेरा भक्त भजना भजन करे, अपने जो सेवा का जो बल है वो है भजन, वो सेवा बल उनका पास आध्यात्मिक बल सफिशिएंट होना चाहिए, भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं, इसलिए वो आदेश भी देते हैं। मन मना भव मद भक्त, ये ठाकुर जी का स्पेशल इंस्ट्रक्शन, मन मना भव मद भक्त भव मद याजी मद नमस्कुरु, केवल ये नहीं कि मत फेस्टिवल करो, मेरे लिए फंड फंड कलेक्शन करो, मेरे लिए ये करो, ये थोड़ी कहे, ये चार बात में ये नहीं कहे। तो ये तो भजनानी महात्मा थे, बोले मैं किस काम में फंस गया यार, ये तो सब नहीं हो पा रहा है, सुबह शाम तक 50 लोगों से मिलना, 50 से बातें करना, ये करना वो करना, कुछ नहीं, मैं तो फंस गया, अब ड्यूटी को श्रृंगार करना, भोग लगाना, नहलाना धोलाना, उनका कुछ नहीं था बेचारे, नाम जप करते थे। तो ठाकुर तो अंतर्जामी जे, वो जो बिना मांगे बिना पूछे जो जान गए थे दूध पीने वाला बाबा है, तुम पकड़ ले दो, नहीं जानते हैं कि बाबा मन में दुख पाता है, सेवा तो मेरा करता लेकिन मन में पाता है, तो भजन उनका पूरा नहीं हो पाता, भजन उनका वही टाइम इसमें जाता है, कर नहीं पाता। तो बाबा अंतर्जामी भगवान ने मन में सोचे मेरे बाबा को ठीक ठाक करना है, भजन में डालना है उनको, भजन सुख, तो इसलिए उनको गर्मी लगने लगा, उनको डेली 108 से ज्यादा कलश से पानी डाल करके गोविंद कुंड के पानी, मानसिंह के पानी से नहाते थे, लेकिन बोले मुझे गर्मी लगता है, गर्मी लगता है, चंदन लाने के लिए बताए। तो माधवनपुरी सोचे मेरा तो अनेक शिष्य है, किसी को बोल दूं, फोन कर दूं, चला जाएगा, फोन तो कभी नहीं था तभी जमाने में, बोले किसी को बोलने से कोई चला जाएगा, लोग जाकर कोई कलेक्शन के लिए खबर दे देगा किस पर लाए। लेकिन ठाकुर जी बोले माधवेंद्र नहीं, आपको ही जाना पड़ेगा, दूसरा किसी को भेजने से नहीं होगा, पर्सनली आपको जाना पड़ेगा, हाँ मुझे जाना पड़ेगा ना, हाँ आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान ने आदेश दिए कि आपको जाना पड़ेगा, तो माधवनपुरी तब भी नहीं गए। बोले ठाकुर जी की सेवा में कर रहा हूँ, छोड़कर कैसे जाऊँ, उनके सेवा का व्यवस्था करे तभी तो जाऊँ। लेकिन लिखा गया है कि सैकड़ों संख्या में उनके ब्रजवासी ब्राह्मण शिष्य थे, लेकिन किसी को मंदिर के ठाकुर जी की सेवा का पूजा का अधिकार सेवा नहीं दिए उन्होंने। उनको बोलते बाहर झाड़ू लगाओ, देखवा कोई ये करो ये करो, ये सेवा नहीं दिए उन्होंने। वेट किए, ठाकुर जी का अनुप्रयोग नहीं गए, वेट किए। बंगाल से दो डिवोटी आकर पहुंचे तो उनको शिक्षा दिया, दीक्षा दे करके उनको मंदिर का दायित्व दे करके, सेवा पूजा का दायित्व दे करके तो माधवनपुरी गए, निकले गए। तब जवानों तो गाड़ी घोड़ा ट्रेन बनना था, पैदल में चलकर जाना था, रोड सड़क इतना नहीं था। ओ जंगल पहाड़ नदी नद नाला कितना पारी करते हुए, इतने सो मांगते हुए, तो मांगने वाला भिखारी है, वो मांगेगा भी नहीं किसको, बिन मांगे जाएगा, कोई ला कर दूसरे चीज देने से लेगा भी नहीं, केवल दूध कोई मन जान कर दिया तो पिया, नहीं तो नहीं। सो फास्टिंग करके चले, से चलते चलते जा करके पहुंचे कहाँ, महीना दिन लग गया मायापुर में, शांतिपुर में। शांतिपुर में जब पहुंचे थे तभी जाते समय में अद्वैताचार्य से भेंट हुआ था, अद्वैताचार्य उनसे दीक्षा लिए थे, तभी अद्वैताचार्य का दीक्षा सेरेमनी तभी हुआ था जब जा रहे थे पूरी की तरफ। तब फिर से वहां से चलते चलते जैसे गए, जाकर गंगा पार करके सुवर्णरेखा पार करके जब ओडिशा बॉर्डर में पहुंचे तो वहां से थड़ी बड़ा लोग अकेले चलते चलते थक गए थे। किसी को पूछे कि भाई रात होने जा रहा है, यहाँ कोई मठवाड़ी है कहाँ, थोड़ा रात को विश्राम करने के लिए सुविधा है, तो यहाँ के लोग बाबा अरे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, क्या बात है, गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ गोपीनाथ जी के मंदिर है, वहाँ के यहाँ बहुत सुंदर भोग लग रगला है, लग रहा है, और बहुत बड़ा गौशाला है, और खीर का चक माल बन रहा है यहाँ, तो आपके सब सुविधा हो जाएगा, जाओ। तो बाबा ने फिर पूछताछ करके वो मंदिर में, गोपीनाथ मंदिर में जाकर पहुंचे, जाके दर्शन किए, दर्शन करके बड़े मुग्ध हो गए, इतने सुंदर विग्रह। अब मैंने विग्रह के बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ आपको, परिचय जो विग्रह को माधवनपुरी देखे, इतने सुंदर विग्रह है, वो विग्रह कैसा कहाँ से किस प्रकार आए थे। किंवदंती इस प्रकार है कि इस जो तृतीया गए, इस तृतीया में उसके पहले कल्प के कोई तृतीया युग में, इस कल्प के नहीं, इस ब्रह्मा के पहले जो ब्रह्मा थे तभी के कोई कल्प का कोई तृतीया युग में, भगवान राम तो हर कल्प कल्प आते हैं, कृष्ण भी आते हैं, वो जब उनके वनवास हुआ, भगवान राम ने वनवास लेकर के राम सीता लक्ष्मण आए, आकर के सबसे ज्यादा समय कहाँ रुके, चित्रकूट में, लगभग 11 साल से ज्यादा चित्रकूट में रुके थे उन्होंने, चित्रकूट वास किए थे कामदगिरी में। तो वो कामदनाथ में जब भगवान राम सीता लक्ष्मण रहा करते थे, एक दिन का घटना क्या है, लक्ष्मण जी गए हैं कुछ फल मूल संग्रह करने के लिए, तो दिन का दोपहर का समय है, धूप पड़ा है, थोड़ा थोड़ा झिमी झिमी बारिश हो रहा है, बड़े सुंदर वातावरण है, बड़े सुरम्य रमणीय जंगल के बीच में वो पहाड़ के ऊपर एक सुंदर शिला के ऊपर, पत्थर के बड़े चट्टान है उसके ऊपर सीता जी बैठी हैं और भगवान भी खड़े हैं। बैठ करके भगवान हटात देख देख कर किसी को हंसने लगे, बड़े हंसने लगे, तो सीता देवी देखने लगे, प्रभु क्यों हंस रहे हैं, क्या बात हो गया, चारों ओर देखे कुछ तो है नहीं कोई विशेष, तो पूछने लगे प्रभु क्या बात है, आप हंसने का क्या कारण है, क्यों आप हंस रहे हैं, ना नहीं ऐसे नहीं 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 कुछ तो कारण होगा, हंसने तो आप ऐसे नहीं हंसेंगे, प्लीज बताइए बताइए क्या कारण है। तो फिर ठाकुर जी ने बता लिया ऐसा कोई बात नहीं है, वो दूर से देख रहे ना क्या ना, वो जो गाय चर ना, हम देख रहा हूँ गाय चर रहे हैं, ग्वाला गाय चर रहे हैं ना, बस उनको देख रहा सर ना, उनको देख कर कौन सा बड़ी बात है, ग्वाला गाय चर डेली चरा रहे हैं ना, नहीं आज मेरे याद आया इसलिए, क्या याद है ना, अभी अगले बार मैंने ऐसे ही ग्वाला बनकर आने वाला हूँ, नहीं आप ग्वाला बनेंगे ना, अरे ये कैसी बात है, आप राजपुत्र है, सूर्यवंशी राजकुमार है, अपना शान कितने बड़े थाट काट कुल शील वर्ण गौरव क्या है, कितने सुंदर आपका चेहरा है, आप ये ग्वाला बनेंगे, वो भी ठीक होगा, वो कैसे ठीक होगा, आप इतने सुंदर राजकुमार चेहरा उनका ग्वाला बनेंगे, ना ढंग का कपड़ा ना लता ना खाना ना पहनना पाठ ना साठना दिखा सिखा कुछ भी नहीं, उन लोग का मूर्ख है, तो अहिर अहिर बोलते ना घोष, अरे वो कैसे, बोले नहीं वो भी ठीक है, पर ठीक कैसे आप ग्वाला बनेंगे तो मैं क्या बनूंगी, मैं ग्वाला हूं, तुम ग्वाली नहीं बनोगी और क्या होगा। मैं भी ग्वाली नहीं बनूंगी ना, वो भी अच्छा ही होगा ना। नहीं नहीं नहीं, अच्छा आप बताते हैं, अच्छा आप कैसे लगेंगे दिखने के लिए, अच्छा लगूंगा ना, मैं थोड़ा बताया आप कैसे दिखाई पड़ेंगे। आप अगर ग्वाला बनेंगे, गोप बनेंगे, तो कैसे दिखाई पड़ेंगे, कैसे दिखाई पड़ेंगे। तो सीता देवी ने एक जिद पकड़ ली, मुझे थोड़ा बताइए आपका कैसा रूप होगा, आप ग्वाला बनेंगे, किसने किसने दिखाई पड़ेंगे। तब जाना तो फोटोग्राफी नहीं था, ठाकुर जी फोटो लेकर दिखा देंगे। तब ठाकुर जी बोले, सीता जी को संतुष्ट करने के लिए आपने त्रुणीर से एक तीर खींच लिए, तीर लेकर जो पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, पत्थर का चट्टान था, उसमें एक चित्र अंकन करने लगे, रेखा चित्र, पता ना, पेंसिल में और स्केच में पेपर में से बनाते चित्र, तो ऐसे चित्र बनाने लगे पत्थर के ऊपर। तीर से चित्र बनाए, तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं विग्रह, वही चित्र भगवान राम के बनाया हुआ है, द्विभुज मुरली विग्रह है। तो उस विग्रह को बना देकर बोले सीता जी, बोले देखो ये, सीता जी तो मोहित है, बोले वाह इतने सुंदर, इतने सुंदर, कुछ भी नहीं कपड़ा लता, कुछ भी नहीं, खाली खाली में इतने सुंदर, अगर कपड़ा होता, थोड़ा अलंकार होता तो कितने सुंदर होता। तो भगवान के हाथ से तीर को लेकर के बोला, थोड़ा सा एक माला पहना देना चाहिए, आप कुछ भी नहीं पहनाए, खाली खाली रखे, थोड़ा सा लेकर के तीर जब लगाए करने के लिए तो ब्लड निकला। बोले अरे ये क्या होगा। तो भगवान बोले, तू आप क्यों विश्वास कर रहा था कि चित्र मैं जो मेरे हाथ से बनाया तो क्या साधारण चित्र रहेगा क्या। जिसको ये दुनिया को मैंने रचा, तब तो आप लोग सब घूम गए, तो इसको मैंने रचा मेरे हाथ में, तो फिर साधारण कैसे रहेगा। तो इसे तिराघात क्यों किया। तो सीता जी ने बड़े दुखी हुए, बोले क्या करूँ, मेरा गड़बड़ी हो गया, तो फिर उन्होंने अपने प्रायश्चित करने के लिए बोले, मैं अभी डेली उन विग्रह की पूजा करूंगी। तो प्रतिदिन उन्होंने फल मूल और सब उपचार करके सीता देवी ने प्रतिदिन उनके पूजा करने लगी उस विग्रह की। तो पूजा चलते रहा, भगवान तो यहाँ कई सालों रहे, चलता रहा। अंत में भगवान फिर दंडकारण्य निकल गए, सीता देवी चल गए। जब निकलने लगे तो देव ब्रह्मा जी ने ऊपर से देख रहे थे उनके सोलीला, वो आकर पहुंचे, बोले कि माता जी आप जा रहे हैं, तो मेरा एक अनुरोध है, मैंने तो देख रहा था, मैंने कुछ कर नहीं पाया था, लेकिन ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे ये सेवा अधिकार दे जाइए, आप तो चले जाएंगे, विग्रह का सेवा मैं करते रहूँगा। माता जी बोले, हाँ मैं भी सोच रहा था क्या करूँ, बड़े दिन में से करना नहीं, मैं करते रहूँगा कृपा। तो उन्होंने सीता जी से सेवा अधिकार लेकर के ब्रह्मा जी ने सेवा करने लगे, सीता जी चली गई। और उस कुछ दिन से ब्रह्मा जी ने पूजा करने लगे। तो उसके बाद में वो लोग तो पंचवटी चले गए और सीता हरण हुआ और ब्रह्मा जी पूजा करते रहे। जो उसके बाद में समय व्यतीत, कल्प व्यतीत हो गया, ब्रह्मा जी की ट्रांसफर हो गया, दूसरे ब्रह्मा आए तो उनके से पता नहीं था करने के लिए, ऑडियंस पूछे नहीं थे, दिखे नहीं थे। तो फिर पूजा वूजा रुक गया, बंद हो गया, अनेक युग वर्ष काल व्यतीत हो गया, ऐसे ही चट्टान पत्थर भगवान के बनाया हुआ विग्रह रह गया जंगल भूमि। तो इस समय जो कलयुग में एक राजा हुए थे लंगुड़ा नरसिंह देव, जिन्होंने कोणार्क मंदिर का निर्माण किए हैं, उन्होंने गजपति महाराज थे, तो उन्होंने राज्य विजय करने के लिए गए थे उत्तर सीमांत में। जब राज्य विजय करके उत्तर भारत की तरफ आए थे, वहां से जो वापस जा रहे थे, विजय ध्वनि लेकर के बड़े साज बाज में बाजे गाजे, हजारों लाखों सैनिक घोड़े हाथी लेकर के राज्य विजय करके बड़े खुशी के साथ वापस जा रहे थे, तब उनका आगवानी करने के लिए कई जगह में कई लोग सब उनका ये करते थे। तब चित्रकूट के पास में बड़े सुंदर, क्योंकि इतने हजारों लाखों संख्या में घोड़े हाथी सैनिक कहीं रहेंगे, तब जहाँ तो ट्रेड बाथरूम तो इतना हुआ नहीं करता था कहीं रूम, तो जहाँ नदी पहाड़ जंगल और भरोसा होगा, ऐसी व्यवस्था होगा, तो वहीं रुक जाते थे। तो चित्रकूट जैसे सुंदर जगह देख करके तो वहाँ कैंप लगाए, राजा कैंप वहीं लगा। तो उसी समय राजा को स्वप्न हुआ, वो विग्रह ने स्वप्न के, तो जगन्नाथ के भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, तो स्वप्न के राजा तू तो विष्णु भक्त है, जगन्नाथ जी के सेवक है, तो मैं यहाँ बहुत दिनों से पढ़ा हूँ, मुझे उद्धार करके पूजा का व्यवस्था हमारा कर दो। तो राजा ने ऐसे बोला, ठाकुर जी का प्रश्न सपना आता है कि क्या बात है, कोई कहा? तो फिर उनको कन्फर्म सुना कि इसे पहाड़ के ऊपर है और आप जाकर देखो। मैं कैसे पता लगाऊंगा ना, आप लोग भेजे, देखो एक प्रतिदिन एक गाय जाता है और यहाँ दुग्ध दान करके आ जाता है, पता लगा। तो लोग दूसरे दिन पता किए, सही में गाय जाकर दुग्ध दान करके आती है, तो आकर बताया कि हाँ ऐसी चट्टान तो है, गाय जाकर दुग्ध देकर आ जाती है, लेकिन बिल्कुल काला पड़ चुका है पत्थर, कुछ बिग्रह विग्रह कुछ तो नहीं इधर। तो भगवान राम ने कंसल्ट किए मंत्रियों से, क्या बात है ऐसा है? तो बोले नहीं ऐसा हो सकता, हम लोग जाकर देखना चाहिए। तो सब मंत्री विद्वानों को लेकर के राजा जी ने गए, जाकर के जो पत्थर देखे बिल्कुल ब्लैकिश पत्थर है, लेकिन थोड़ा उनको खरोचन दो, वो साफ करने के लिए गए, देखे कि वो तो कई प्रस्त दूध के लिए अर्घल पड़ा था, बाकी पत्थर ठीक था। जैसे प्रस्तर आस्तरण उठाने लगे तब तो क्लियर दिखाई पड़ेगा, वो चित्र है दिव्य गोपाल विग्रह चित्र। तो फिर वो चित्र के साइज के अनुसार जो पत्थर था, उस पत्थर को काट करके उस पीस को निकाल करके हाथी में लोड करके वह जगन्नाथपुरी ले जा रहे थे। जब जगन्नाथपुरी ले जा रहे थे, कई दिन लगा रास्ता, कई बार लुके होंगे, बड़े कुछ ले जा रहे थे। तो लेते लेते जिससे पानी तो नहीं पीते, बटल क्यों लेकर आते साथ में? बटल आपको पी जाता है, आप तो पानी के नहीं पीते। नाउ डे दिस इज फैशन आई थिंक, है ना? सो बटल। तो जब रेमुणा ग्राम में पहुंचे, रेमुणा ग्राम का नाम असली नाम रेमुणा नहीं है, असली नाम है रमणीय। रमणीय अपहरंश होकर रेमुणा अपहरंश हो जाता ना, कहीं नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा चेंज कर, लोग निक नेम में बोलते हैं उनको, रमणीय को शॉर्ट फॉर्म में निक नेम में रेमुणा बोलने, एक्चुअली रमणीय है। तो इतने सुंदर रमणीय वातावरण था, बड़े सुंदर विलेज एटमोस्फियर गाँव का, बहुत सर बहुत संख्या के अच्छे क्वालिटी के गाय थे इधर, और ग्वालों का बहुत बड़ा बस्ती था। तो भगवान ने प्रसन्न हो गए, भगवान के गाय के साथ इतने संपर्क है। भगवान ने जब देखे अति संख्या में गाय और अति संख्या में गो सेवक, तो भगवान बोले मैं जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरा क्या पड़ा है जाकर के राजपाट में जगन्नाथ प्रेम जगन्नाथ जी के पास रहने दो, जगन्नाथ जी को इधर हम नहीं जाएंगे, हम गोप है ग्वाल है यही रहेंगे, हम राजा छेला थोड़ी। तो राजा को बोले राजा मैं यही रहूंगा, मुझे अच्छा लगता है, मुझे यही व्यवस्था कर दो, मैं ग्वाला हूँ, ग्वालों के साथ रहेंगे, मेरे गाय के साथ अच्छा पसंद है, गाय अच्छा जगह है और मैं दूध पीऊंगा, यही रहूंगा। तो राजा बोले ठीक है आपकी जैसी इच्छा प्रभु, मैं क्या कर सकता हूँ। तो राजा ने फिर उनका मंदिर बनाया, पूजा की व्यवस्था किया, बड़ा गौशाला बना दिया, जो ब्राह्मण लाकर उनका सेवा पूजा की व्यवस्था कर दिया, और बोला कि प्रतिदिन यहाँ दूध का विशेष भोग लगना चाहिए, ठाकुर जी को दूध पसंद है, इसे व्यवस्था करके और राजा चला गया। तो उसके बाद से उसी एरिया में वो ठाकुर जी वो विग्रह जो भगवान राम ने जिसको बनाए थे, उस विग्रह रह करके गोपीनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्धि हो गया। अभी भी आप जो गोपीनाथ मंदिर को गए होंगे, देखे भी होंगे, आप देखो जैसे हमारा मंदिर में बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं, ड्रेस पहनाते हैं मुकुट पहनाते हैं, वहाँ नहीं पहना सकते, आप देखें कभी जाकर, क्योंकि ये तो एक पत्थर का एक रेखा चित्र है, एक पीस स्टोन है, उसका पीछे मूर्ति जैसा विग्रह मूर्ति तो है नहीं, तो इसलिए धोती पहनाएंगे, ये गम लेकर के यहाँ चिपका देंगे कुर्ता भी यहाँ चिपका देंगे, कोई पीछे तो कुछ है ना, रेखा चित्र उनको पहना देता है, ड्राइंग करते, ड्राइंग में कोई कपड़ा थोड़ी पहना सकते, एक कपड़ा से वो ये प्याच लगाते हैं गोंद के साथ, क्योंकि है ना विग्रह नहीं है, रेखा चित्र भगवान जो हाथ में मनाते वही उनके ही हाथ का मंडल, उन्हीं का विग्रह उन्होंने स्वयं बनाया था। तो विग्रह द्यावधि गोपीनाथ के रूप में पूजा पाता था, और ओ विग्रह आज माधवेंद्रपुरी जैसे भक्त गए जाकर उनको दर्शन किए, नृत्य किए, तो बड़े प्रसन्न हुए, तो पूछने लगे, बोले कि मैं भी तो गोपाल के सेवक हूँ, ये गोपीनाथ के सेवक हैं, गोपीनाथ की सेवा बहुत पुराना से सुनना हो, कैसे करते हैं वो लोग सब? उन लोगों का कुछ विशेष उपाय है क्या? अगर मुझे पता चले तो मैं भी ऐसा करूं, सीखूं। देखो जो भक्त होते हैं अच्छे जगह सीखने का मन करता है, ये पुराना से क्या क्या अच्छा पॉइंट है, मैं भी ऐसा करूं। तो सीखने के लिए बड़ा इच्छा मन में था, तो इसलिए पूछे बाकी क्या सीखूं, कम से कम क्या इधर भोग लगता है? भोग तो लगता है, सौराष्ट्र लग रहा 6-7 टाइम भोग लगता है, लेकिन शाम के समय एक भोग लगता है, क्या बताऊं, एक ग्लास का 12 कुल्हड़ का खीर भोग लगता है ना, उसको खीर बोलते हैं, और कंडेंस मिल्क जैसा है वो, तो दूध से बना हुआ। तो वो जो है अमृत के संदृश है, उसका नाम है अमृत कली, और क्या बताऊं उसका महिमा बताए। तो माधवेंद्रपुरी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, बोले मुझे अगर ऐसा मिलता, मैं अगर थोड़े खीर खाता, थोड़ा टेस्ट करता, क्योंकि दूध खाने वाले हैं और दूध का आइटम है, बोले चलता, मेरे लिए तो कोई नियम का बहिर्भूत भी नहीं है, मैं थोड़ा अगर उसको पाता तो मैं मेरे गोपाल के लिए भी ऐसा बनाता। मन में ही संकल्प विकल्प कर रहे थे, तभी देखे कि पुजारी ने प्लेट में लेकर कुछ जा रहा है, तो बोले क्या? नहीं, भोग जा रहा है, ठाकुर जी को अर्पण होगा। बोले राम 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 राम, मैंने यही साधु बाबा हूं, अभी ठाकुर भोग नहीं खाया, मैं खाने के लिए सोच रहा हूँ, और सारे दुनिया को धोखा दे रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े भगत हूँ, अजा चक्रवृत्ति के संत हूँ। आपने आपको इतने कोसने लगे, आपने आपको इतने गाली देने लगे, वो तुच्छित समझ कर अपना को क्रोह करके यहाँ से जगह छोड़ करके चल दिए, जा करके अकेला मंदिर से थोड़ी देर पीछे एक मार्केट बैठता था दिन में कभी दिन में, वहाँ हाट बाजार, यहाँ पेड़ के नीचे बैठने लगे, बैठ कर रोने लगे। तो वहाँ पे रात्रि शयन आरती से पहले भोग लगता है, शयन आरती पुजारी जाके भोग लगाया, भोग लगाने के बाद प्रसाद ला के रख दिया, और शयन आरती किया, पहुँच दिया, कवाड़ बंद कर दिया, आके सोया, रेस्ट किया। मध्य रात्र में अब पुजारी को ठाकुर जी जाकर उठाए, पुजारी उठ उठ पुजारी, पुजारी लगा क्या बात है, कोई सपना है, सही में क्यों बुलाता है? उठा देखा तो मिड नाइट है, कुछ नहीं, अब तो टाइम नहीं हुआ उठने का, फिर सो गया। सो गया ठाकुर जी से डांट कर उठ, बोले क्या कर रहा पुजारी? बोला आप बुला रहे हैं, ये देखा कि गोपीनाथ बुला रहे हैं उनको, बाहर का फोन है। हरे कृष्णा, ओ सर्वहोम नाउ आई एम इन ए क्लास हियर इन दिल्ली, सो ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा, आई रीच देयर हैप्पीली, नो प्रॉब्लम। तो क्या बोला था मैंने, पुजारी बोला क्या ठाकुर जी? हाँ मैं बुला रहा हूँ, उठो, क्यों? जा करके मंदिर खोलो, मंदिर खोल करके वो देखना मेरे धोती के नीचे एक पॉट खीर का मैंने चोरी करके छिपा के रखा हूँ, उसको निकालो, फिर ना उसको निकाल करके लेकर जाओ पीछे हाट बाजार में, लेकर लेकर के माधवेंद्रपुरी मेरा भक्त है उनको लेकर दो। जरा मैं कैसे पहचानूंगा, ये तेरा बिजनेस है, तू जाकर नाम पुकारना माधवेंद्रपुरी, वो आएगा आपके पास, उनको दे देना, जल्दी करो। डांट दिए ठाकुर ने, पुजारी ने उठा, ठाकुर जी तो सपने में आदेश दे के चले गए। उठा देखा मध्य रात्र है, क्या करेगा, मंदिर खोलना पड़ेगा तो स्नान करना पड़ेगा मिड नाइट को, तभी तो कोई टैप तो था नहीं, बाथरूम आटा छोटा नहीं था, जाकर कुआं रस्सी लगाकर पानी निकाला, नहाया, नहा करके कपड़ा बदल कर तिलक पट्टी करके फिर गया, स्विच इलेक्ट्रिक लाइट तो नहीं होता, स्विच ऑन करो चले जाओ फटाफट, कुलप खोलेगा, ताला खोलेगा, बत्ती लगाएगा, दीप लगाएगा, दो चार दीप दीप जलाया, दीप जला करके मंदिर के अंदर खोल करके प्रणाम करके अंदर जा करके जो ठाकुर जी को पहुड़ दिया था, जैसे धोती उठाया, धोती उठा कर देखता है क्या, एक कप खीर का एक कुल्हड़ खीर रखा हुआ है। उसको देख करके पुजारी ने इतने मोहित हो गया, दोनों में पड़ गया, रोने लगा, ठाकुर जी को देखने लगा, उनको देखा, ठाकुर जी की धोती पकड़ा है हाथ में चरण से, ठाकुर जी को देख रहा है, उन्हीं का सेवक है ना, बोला प्रभु ये क्या है, हम सब आपके दास नहीं है क्या, आपको चोरी करने क्यों पड़ा? ये सारे गौशाला आपके, ये गांव सारे आपके हैं, हम सब आपके हैं, ये सारे भोग प्रसाद सब तो आपका ही है। आप चाहे मर्जी पूरा 12 के 12 26 जो सबको दे दो, किसी को दो, आपको कौन मना करे। आप ये एक बर्तन चोरी करके छिपा करके आप धोती भी पहन नहीं पाते, उसके नीचे छिपा के रखे क्यों, ऐसा क्यों किए? और आप बोलते हैं मैं चोरी किया कौन को, मैं तो अद्भुत चोर देखता हूँ दुनिया में। अभी तक तो कोई ऐसा चोर हुआ जो चोरी करने के बाद आधी रात में लोग को उठा गया जो जिससे चोरी किया, बोलेगा आकर देखो मैं चोरी किया हूं। कभी ऐसा होता है? ऐसा कभी सुना आपने? चोर आकर के खुद घर मालिक को बोलेगा देखो मैंने चोरी किया हूं आपके देखो, बोलेगा ऐसा कभी होता है? तो आप कैसे बोलते चोर करके, आश्चर्य लग रहा है आप क्यों ऐसे चोरी किए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। गोपनाथ बोले देखो टाइम वेस्ट मत करो, तुझे पता नहीं मेरे बारे में, तू मेरा सेवा करता है ठीक ठाक, तू मुझे पता नहीं, क्या पता नहीं हम इतने सेवा, तू मुझे सेवा करता है, मेरा बैक रिकॉर्ड थोड़ी देखा तूने, प्रीवियस रिकॉर्ड तू जांचा नहीं था, तो क्या मैं तो जन्म से चोर हूं, आज का थोड़ी नया चोर थोड़ी हूं, एक मिनट का चोरी किया, आप चोर है। अरे ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं गोपांगनानं दुकूल चोरं, ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं गोपांगनानं दुकूल चोरं। हे आपके पास में अनेक जन्मार्चित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे आप गा सकते हैं आपके पास है? बोले ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं गोपांगनानं चदुकूल चोरं, ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं गोपांगनानं चदुकूल चोरं, अनेक जन्मार्चित पाप चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्म शिराधिकाया हृदये स चोरं न बाम्बुदस्यामलकान्ति चोरं, शिराधिकायामलकान्ति चोरं पदाश्रितानं च समस्त चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, पदाश्रितानं च समस्त चोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो ठाकुर जी अपना रिकॉर्ड बताते हैं, बोले तुझे पता नहीं मेरा हिस्ट्री मेरा रिकॉर्ड, कहना मैं तो फेमस हूँ, ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं, मैं प्रसिद्ध हूं, प्रसिद्ध है किस मामला, चोर है, चोर के नाम से प्रसिद्ध हूं, क्या चोरी कर रहे थे ना माखन चोरी, आप भी जाकर पूछो माखन चोर करके हम क्या बताते हैं, दूसरा कोई मेरे लायक होगा, कोई माखन बाद में चोरी किए भी होंगे लेकिन नाम मुझे मिलेगा, चोर बहुत माखन चोरी करके खाए होंगे लेकिन माखन चोर करके नाम तो फिर दूसरा कोई कॉपी नहीं कर सकता, मैं रखना मैं बजे प्रसिद्ध नवनीत चोर, बोले प्रसिद्धि मेरा है चोरी के नाम से। अच्छा और क्या ना गोपांगना नाम चुकूल चोरम ना, चलो कभी खाना नहीं, केवल खाने पीने का वस्त्र नहीं और भी चोरी करता हूं, क्या ना कपड़ा भी चोरी करता हूं, कपड़ा भी चोरी कर देना, हाँ नया कपड़ा नहीं पुराना कपड़ा गोपियों के पहना हुआ कपड़ा भी चोरी किया मैंने, नया कपड़ा चोरी करना तो ठीक है, किसी का पहना हुआ कपड़ा चोरी करना गड़बड़ी नहीं, बोले वो भी चोरी किया, तो रिकॉर्ड है मेरा और क्या ना, अनेक जन्मार चित पाप चोरम। बोले केवल बोलेंगे एक वस्तु चोरी करता है, ये वो तो छोटे मोटे चोर भी चोर कर लेते हैं, ऐसे हमारे गांव में भी माध्याव में समूह है, वो भी चोरी कर लेते हैं, किसी का कपड़ा, किसी का गमछा, किसी का क्या चोरी कर लेते हैं। आप ऐसे को चोरी करके कैसे प्रसिद्ध होंगे? बोले नहीं, मैं केवल यही कपड़ा लता माखन चोरी के प्रसिद्ध नहीं, मेरे और भी चोरी करता हूँ, और भी अच्छा चीज चोरी, और क्या चोरी किए ना। अनेक जन्मार्चित पाप चोरम, अनेक अनेक जन्म से जितना पाप आप इकट्ठा किए हैं, ऐसे चोरी कर, कोई चोरी कर पाएगा अभी तक? ऐसा कोई माइकेलाल चोर हुआ है जो एक दिन का पाप ले ले, एक पिछले दो घंटा में जो पाप किए ले ले? कोई नहीं लेने वाला। ऐसा चोर है जो चोराग्र गण्यम पुरुषम है, महापुरुष महाचोर है, जो ऐसे चोरी कर सकता है। ऐसा चोर कोई होगा? बोले मैं ऐसा फेमस हूं, और क्या चोरी क्या है ना, और भी क्या हूं। सिराधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुदस्यामलकांति चोरम। बोले और भी चोरी किया हूं, राधा रानी का हृदय को चोरी कर लिया। ऐसा भी चोर कोई सुना? सुना तो टपस्टोर है ना, नहीं रिकॉर्ड है ना नहीं उनका, कोई अभी तक ऐसे होगा नहीं, कोई हार्ट चोरी करने वाले। और बोले जो मेघ है नव निरद, नया मेघ का जो कांति है उसको भी उनसे चोरी कर लिया। मेघ फिर सफेद हो गया, कालेपन में ले लिया उनसे। श्यामल कांति चोरम, और क्या है न, पदाश्रितानं च समस्त चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, पदाश्रितानं च समस्त चोरम चोराग्रगण्यं। बोलते हैं बाकी जो मेरे चरण के आश्रय लिया उनका तो केवल कपड़ा लता नहीं, सब कुछ चोरी कर लेता उनका, समस्त चोरम। उनको रास्ता के भिखारी नहीं करके खड़ा नहीं कर दूं तो मेरा नाम चोर नहीं है। होशियार रखो, घर छुड़ा कर लाके मंदिर में जैन करा देता है। उनके आश्रय लो तो माँ बाप आशा छोड़ देंगे, ये तो बाबा जी हुआ रे बाबा। राधे कृष्ण करते रहेगा। सब छुड़ा लूंगा उनसे, भिखारी करके ही छोड़ दूंगा, रास्ता में घुमा दूंगा कंगाल करके। और क्या अकिंचनिकृत्य प्रसीदताम य करोति भिक्षुं प्रतिगेहहीनम्। केनापि अहो भीषण चोर इद्रुक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। कहते हैं कि देखियो कैसा भीषण चोर है, ऐसा चोर है कोई चोरी करके ले गया, भाई ले गया, हम तो पर चलते हैं, किस दिन वाले चोरी होगा, इतला दिए, सामान मिला नहीं मिला कोई बात नहीं। बोले अकिंचन कृत्य प्रसादितम यह, मैं जिसका चोरी करता हूं ना उनको ऐसे चोरी करता हूं, उनको हर चीज से बेकार करके अकिंचन करके मेरे लायक बना देता हूं, केवल सबसे निकाल करके मेरे लायक बना देता हूं। पदाश्रितम यह करोति भिक्षुं प्रतिगेहहीनम्, उनको ऐसे भिखारी बनाता हूं, रास्ता में भिखारी मधुगरी करे फिर मिलते हैं घर द्वार छोड़ करके, ऐसे हाल कर देता हूं उनका। केनापि अहो भीषण चोर इद्र, ऐसा कभी भीषण चोर कभी देखा? अब मुझे बोलता है कि चोरी किया, रिकॉर्ड नहीं जानता मेरा। दृष्टो सुतवा जगत त्रयेपि, कोई जगत में ऐसा सुना ना देखा? यदि अनामापि हरत्यशेषम गिरी प्रसारान अपि पापरासिन। आश्चर्य रूप ननु चोर इद्रुक् दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि बोलते यदि नामापि हरति यद्यपि वो चोर तो केवल चोरी करने के लिए नहीं आता, चोर का नाम कोई ले ले चोर अभी आया नहीं, वो ऐसा चोर है दो चार बारे चोर का नाम कोई ले लेता है अशेष पाप हरती, इतने पावरफुल चोर है चोर का कोई नाम ही ले ले तो आपका समान गाय ऐसा है। बोले यदि नामापि जिसका नाम हरति पाप है उसका नाम ही काम बना देता है, कितना पाप हरता है ना, गिरी प्रसारण अपि पाप रासिन, पहाड़ पहाड़ पूंजीभूत पाप को केवल नाम ही हर लेगा, तो पुरुष आएगा तो क्या करेगा, आदमी बिना केवल उनका आइडेंटिटी से इतना काम हो जाता है नाम लेने से। आश्चर्य रूप ननु चोर इतर मत ऐसा ऐसा अद्भुत चोर तो कभी देखा ही नहीं, दृष्टार्थ तो पुनः मया कदापि मीना कभी ना देखा ना सुना, ऐसा अद्भुत चोर है। फिर क्या बोलते हैं, न धनम च मानम च तथान्द्रियाणि, धनम च मानम च तथान्द्रियाणि, प्राणं सहृत्या नम सार्वैव। पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोरा, पलायसे त्वं भक्तिदं नासि मया निरुद्धः। तो भक्त क्या बोलते हैं, कहते हैं धनम च मानम च तथा इंद्रियाणि, बोले धन मान और इंद्रियाणि और प्राण, बोलते हैं कि अब मेरा चोरी करना चाहते तो मेरा सब कुछ ले लो, मेरा धन ले लो, मेरा मान ले लो, मेरा इंद्रिय को ले लो, मेरा प्राण भी ले लो, हृदय ले लो, मम सर्वमेव, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन जाएगा कहां, तू भी जैसा चोर है मैं भी ऐसा पुलिस हूं, कम थोड़ी हूं। पलाय से कुत्र धृतोद्य चोर, आज पकड़ में पकड़ा हूं आपको, आज नहीं छोड़ने वाला हूं, कहां भाग कर जाएगा चोर, तू बड़े रिकॉर्ड दिखा रहा है बड़े चोर हो लेकिन मैं पकड़ा हूं। माधवेंद्रपुरी जैसे पुलिस पकड़ जाएंगे चोर भाग नहीं जाएगा, आपको हाजत देना ही पड़ेगा, खुद आकर बोलेगा कि मैं ही चोरी किया हूं, मान जाएगा। पलाय से कुत्र धृतोद्य चोर, तम भक्ति दाम नासी मया अनिरुद्ध, आज सुधे रस्सी में बांधूंगा अरेस्ट करके, कौन सा रस्सी, ये रस्सी थोड़ी उनको बांध सकता, भक्ति रूपी रस्सी, भक्ति रूपी रज्जु द्वारा दृढ़ करके बांध के रखूंगा, टाइट करके बांध दूंगा आपको। चिंता सी घोरम जम पास बंधम भिन्नास्ति, अच्छा चिंता सी घोरम जम पास बंधम, भिन्नास्ति भिन्नां भव पास बंधम, चिंता सी सर्वस्य समस्त बंधम, नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। बोलते हैं कि चिंतसि घोरं जमपास बंधम, ऐसा चोर का कोई बड़े ध्यान से कोई चिंता किया ध्यान किया तो जमपास बंधम भी टूट जाता है उसका, मैं आपको बांधता हूं आप कैसे बांधेंगे, आपका जो नाम लेता है चिंतन करता है तो उनका जमपास जैसा बंधन भी टूट जाता है। और भिन्नास्ति भीमं भवपास बंधम, बहुत भीम बहुत विशाल भव बंधन भी टूट जाता है उसका। चिंतसि सर्वस्य समस्त बंधम, आपको चिंता करने से समस्त प्रकार बंधन टूट जाता है। नैवात्मानो भक्त, लेकिन आपको मैंने आज जो रस्सी से बांधा हूं आपका कोई ताकत नहीं उसको तोड़ के जा सके, भले आपके चिंतन करने से भीम भव पास कट जाए, जम पास कट जाए, सर्व बंधन कट जाए, लेकिन आपके ये ताकत नहीं कि मेरा बंधन को काट के चले जाए। मेरा बंधन किसका है? भक्ति बंधम, भक्ति से बांध के रखा हूं। तो इसलिए मन मान से तमस राशि घोरे, कारा गृहे दुखमये निबद्ध, लाभास्वहे चौर हरे चिराय, स्वचौर दोषी तयेव दण्डम्, सचौर्य दोष उचित एव दण्डम्। आप बोलते हैं कि चोर को क्या पनिशमेंट क्या देना है? न मन मान से तामस राशि घोरे, बोले आपको केवल बांधूंगा ऐसा नहीं, अंधकार कारागृह में डालूंगा आपको। अब कहां से जाऊंगा? कैसा अंधकार कारागृह? कौन सा कारागृह? जल मन मान से तामस राशि घोरे, मेरा मन जो है महातम गुण का मन है, एक बार डार्क रूम ऑफ जेल, जेल का जो अंधकार कोठरी है ना, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा हृदय है, मेरा मन, मेरा हृदय महा अंधकार कारागृह है, उसी में उसको डाल दिया मेरे हृदय के अंदर है, ये अंधकार कारागृह में डाला। कारागृह दुख मया निबद्ध, मैं तो महा दुखी हूं, मेरा हृदय, मेरा मन तो महा तमगुण से भरा हुआ है, तम माने अंधकार, महा अंधकार कारागृह है मेरा हृदय, उसमें आपको डाल दिया। तो डाल, आप वहीं पड़े रहो, लभस्य हे चौर हरे चिरा, चीर दिन तक मेरे हृदय से पड़े रहो, निकालूंगा नहीं आपको, मेरा हृदय से आपको और बाहर नहीं निकालूंगा, आप निकल ही नहीं पाएंगे, ऐसे बांध कर यहां डाल दिया। फिर ना स्वचौर्य दोष्ट उचित एव दंडम, आपके चोरी का उचित दंड भोगते रहो पढ़ करके इधर, फॉर लाइफ लॉन्ग सेंटेंस जा। हम कभी 10 साल 5 साल देते हैं? हाँ गोसाई बोलो, अभी दिल्ली में नहीं, आज इधर प्रोग्राम है, कल आ रहा हूँ, कल दे प्रोग्राम जा। अभी मैं क्लास में हूँ। कल गुरु नानक महाराज आएंगे, उनको लेकर के आऊंगा, दोपहर को जाऊंगा। हाँ आपके दया से वो ठीक ठाक है। परसों हाँ मैं देखा था आपका चित्र, सो वो जनार्दन ने भेजा था ना इसे मेल में। तो ऐसे चोर को ऐसा बने, तो वो पुजारी सोच रहा है कि प्रभु ये आपने क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा चोरी? तो ठाकुर जी बोले देखो लेट मत करो, मैं पुराना चोर हूँ, ऐसा कोई नया नहीं है कि मैं चोरी कर लिया, बदनवा तो मुझे मेरा रिकॉर्ड तो ज्यादा जानता नहीं, जस्ट गो एंड डू योर जॉब, आप जल्दी लेकर जाओ, लेट हो रहा है, सुबह सबको बताना चल जाए, मैं आपको बता दिया मैं चोरी किया हूँ, मान गया, तो अभी जाओ जाकर दे उनको। पुजारी वो क्या कहे, ठाकुर जी के बोलने बेचारा गया कूलर लेकर के, अब जा करके पहचाना तो नहीं है कौन माधव मंदिरपुरी है, जा करके पीछे हाट बाजार में अंधकार रात्रि अर्धरात्रि है, जाकर कुल्लड़ को लेकर के, कोई माधव मंदिरपुरी है, कोई माधव मंदिरपुरी? तो माधवपुरी तो बेचारे नाम कर रहे थे, अपने आप को धिक्कार रहे थे कि मैंने कैसा अजाचित के संत हूँ, अजाचित वृत्ति के संत हूँ, कि ठाकुर जी खाने से पहले मैं खाने के लिए सोच रहा हूँ, ऐसा तो कोई साधारण भक्त भी नहीं करता है, वो प्रसाद खाते हैं खाने के बाद, लेकिन मैं तो पहले से खाने के लिए सोच रहा हूँ, वो दुनिया को देखा था मैं बड़े भगत हूँ, धिक धिक मेरा जीवन, ऐसे सोच रहे थे। अब अभी आवाज सुनाई पड़ा, देखे बोले रे पुजारी, बोले रे वाह, पता कैसे चल गया लगता है पुजारी को कि मैंने दोष किया, वो तो गड़बड़ हुआ है, आज भोग ठीक से नहीं लगाया होगा, अब तो मुझे पकड़ेगा, मारेगा, डांटेगा, कुछ करेगा, और क्या करेगा, उसी में मैं सोचा था भाग गया, मैं छिप करके यहाँ बैठा, लेकिन पकड़ लिया, बुला रहा है मुझे नाम पकड़ करके। तो अब क्या करे, दो बार तीन बार बुलाए गए, बोले मैं हूँ ठाकुर, डर गए, बोले मैं डांटेगा मारेगा मुझे, मैं तो दोषी हूँ। जैसे गए तो पुजारी ने बोला आप, हाँ मैं ही अपराधी हूँ, आप माधवेंद्रपुरी हो, मैं आप ही हो, आप ही माधवेंद्रपुरी हो ना, हाँ। खीर को रखा दंडवत प्रणाम, माधवेंद्रपुरी थप्पड़ लगाया के साथ, ये क्या कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम करके उठा, वो तो आश्चर्य देख रहे हैं, खीर दिया, बोले देखो आपके लिए हमारे गोपीनाथ चोरी करके ये खीर रखे थे छिपा करके, मुझे आधी रात को उठा करके बोले जाओ आपका नाम पुकार के आपको दो ये खीर कप, आपको चोरी करके भेजे, आप इसको लीजिए पाइए। और जो गोपीनाथ स्वयं बोले कि जाके बोलना मैं चोरी करके आपके लिए रखा हूँ, लो उसको खाओ। वो तो मूर्तिवत होकर सुन रहे गोपीनाथ चोरी करके मेरे लिए रखे, फिर आपको उठा करके आपके सेवक को भेजे मेरे पास, सेवक हाथ में भेजे, धन्य है चोर। जब तो चोरी कर सकता है तो माल मेरे पास पार्सल नहीं कर सकता है। तो दूसरे देवक उनको भी को रात अध में उठा कर क्यों भेजा, ये चोरी कर सकता था मेरा पास कुल्हड़ भेज देता, नहीं भेज सकता था क्या? तो ब्राह्मण को बेचारा को रात अध में उठाने का, फिर उन्हें हल्ला गुल्ला करने क्या जरूरत था, एक कप खीर का मतलब था, इतने सारे ये करने का कोई जरूरत नहीं था, एक कप कुल्हड़ मेरे पास भेज देता, ये भी तो हो सकता था, उनका हाथ क्या छोटा है क्या, यहां से उठाकर वहां दे देता था, दे सकता था। लेकिन उनको बुला करके इतने हल्ला गुला करके इतने करके जाओ फुकारो उनको दो, ये क्यों किया, रहस्य बहुत रहस्य है, ठाकुर जी का काम बड़ा चला गया। तो माधव ने कुछ सोचे तो लिए, जैसे उनके हाथ से खीर लिए तो पुजारी ने दोबारा दंडवत प्रणाम किया और चार बार परिक्रमा किया, उनको परिक्रमा करके चरण धूल लेकर के गया और नाचते नाचते गया, हाय धन्य है धन्य है भक्त माधवेंद्र, तुम्हारे लिए हमारे ठाकुर अपना नाम चेंज कर दिए, चोरी किए चोर बन गए। ऐसे कहते कहते पुजारी गया, माधवेंद्र पुरुष नहीं बोले दिखाओ ये क्या हो गया रे। तो बोले चलो जो हो गया, मैं तो खाने खाने के लिए सोच रहा था खीर खाऊं, ओह अंग से थोड़ा लेके खीर खाए, आप लोग खाए कभी, कौन कौन खाए, ज्यादा लोग तो खाए बंद लगता है, प्रभु जी खिलाते हैं बहुत लोग, तो सचमुच अमृत ऐसा है टेस्ट, तो सुखाए पूरा खा गए, इतने टेस्ट था पूरा खा गए, खाए तो नहीं थे दिन से कभी, और केवल खीर ही खाते हैं वो, तो ठाकुर जी ने खीर दिए उनको खाए। तो खाने के बाद सोचे ठाकुर जी तो केवल खीर चोरी नहीं किए थे, ये कुल्हड़ भी तो चोरी किए थे, कप भी चोरी, कंटेनर भी चोरी किए थे ना, तो उसको भी खाना पड़ेगा, उसको भी भेजे सेवक के हाथ में, खाली खीर थोड़ी भेजे, तो उसको भी तोड़ ताड़ करके वो कुल्हड़ बर्तन को भी खाए। बोले खाली खीर तो चोरी, बर्तन भी चोरी किए थे, बर्तन भी खाना पड़ेगा मुझे, बाकी बर्तन टुकड़ा कर रखे, बोले डेली एक एक दिन सेवा करूंगा। तब बैठ करके इतने आनंदित हो रहे थे, फिर सोचने लगे, बोले अरे ये पुजारी अभी इसे हल्ला गुल्ला करके गया, अब तक काल मंगल आरती से ही हल्ला शुरू करेगा, वो पूरा आवाज करेगा, वहां से मालूम है तुझे ठाकुर जी ने ईशा किए थे, अरे मेरे रात को उठाता, रात को सो नहीं पाया मैं, अभी तक सोया थोड़ी, रात को नींद नहीं लगता मुझे, तो ये हुआ हल्ला करेगा, तब तो तुंड वायद सहस्र को सब जानते ना, एक कहावत है, आप जो जितने आजकल का मीडिया निकला है वो सब फेल मार जाएंगे इस मीडिया के सामने, ये जो पब्लिक टकिंग गॉसिपिंग, गॉसिपिंग इज सो फास्ट वाइड जाता है, इतने जल्दी स्प्रेड आउट होता है, कोई मीडिया काम नहीं करेगा इतना जल्दी इतना फास्ट, है ना, कोई मीडिया इंटरनेट फंड से करंट फंड नहीं रहेगा, सैटेलाइट फिल्म सब फेल हो जाएगा, यहाँ के तो कुछ भी नहीं चल रहे, कोई करंट मरंट कुछ नहीं चाहिए, एक गॉसिप शुरू कर दो इतने हफ्ता दिन में कहां से कहां देशांतर में पहुंच जाएगा, हफ्ता दिन में इतने फास्ट लोक कथा चलता है, इसी कहते तुंड वायद, मैंने बोल के बोली मुंह से जो बोलते छिप छिप कर, इतने जल्दी स्प्रेड आउट होता है, सहस्र कोश तक चला जाता है। तो माधवेंद्रपुरी सोचे जो सही भक्त होते हैं उनका एक विशेष गुण होता है, क्या, अमानी, मान नहीं चाहते कभी, उन्होंने हमेशा अमानी होते हैं, मान का समझ नहीं कभी नहीं चाहते, लेकिन मान का एक स्वभाव होता है, जिनका सचमुच मान पाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है तो सम्मान का नेचर है कि सम्मान उसका पीछे दौड़ दौड़ करके उसके पास आएगा, और जो सम्मान के पीछे पड़े हैं सम्मान वो पीछे पड़े दौड़ेंगे, वो सम्मान भागते रहेगा आगे आगे, वो उनका पकड़ में नहीं आएगा। तो माधवेंद्रपुरी महाअमानी थे, मान नहीं चाहते थे, इसलिए सोचे बोले ना अब कल सुबह तक रहूंगा, तो सुबह आज अकेला पुजारी आया था, कल 10 आएंगे, फिर घंटे भर के बाद 20-25 पूरा गांव वाला आकर के, तो वो तो प्रणाम करके गया, और फिर पूजा बड़े हाला गुला शुरू करेंगे, मेरा तो हालत खराब कर देंगे, मुझे मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मैं तो चलो हो रे रात रात चल पड़े। बोले नहीं मैंने रोड में भी नहीं जाऊंगा, देख लेंगे हला करेंगे, मैं छिप करके दूसरे रास्ते में जाऊंगा। वही जंगल गांव भीतर नदी पट दे करके चलने लगे, और रात रात निकल गए, निकल गए। अब चल करके जाना बालेश्वर से पूरी लगभग 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर और रास्ता में नहीं जा रहे, चल कर जाएंगे, इधर उधर करके कम से कम 15 दिन तो लगेगा। तो लेकिन वो जो पुजारी के बाद जो किंवदंती जो उनका महिमा, वो पहुंचने से पहले पूरी पहुंच चुका था, पूरी पहुंच चुका था उनके महिमा पहले से, वो पहुंचने से पहले, हाँ कैसे गया पता नहीं, कोई नहीं गया था कोई नहीं, लेकिन यही से लोग बोलते बोलते गांव से ही बात है, ऐसे कथा बात होते 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 वहां पहुंच चुका था, और कई बड़बड़ करके पहुंच चुका था। वो तुंड वायद का ये भी गुण होता है, तिल को ताल रूप में जाता है, समझे ना, थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा कर जाते जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते जाता है, तो पहुंच चुका था वहां। माधवेंद्रपुरी बेचारे 15 दिन सोचते मैं छिप छप कर आया, कोई पता नहीं, पुरी में जाता हूँ, थोड़ा जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा, और किसे देखूंगा, मांगूंगा, हाथ पता करके मिले, मेरे पैसा कौड़ी तो कुछ है नहीं, कहाँ से, चंदन तो बहुत कॉस्टली होता है, कोई मुझे देगा नहीं देगा पता नहीं, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठाकुर जी के साथ मांगूंगा, किसको भी क्या करूंगा, कुछ करूंगा, सोच रहे थे जा कर के, लेकिन पूरी कैसे जाएंगे। तो पूरी टाउन में पहुंच करके, बाजार था बड़दांड मार्केट देखा ना बड़ा, किसके पास जाकर एक दिन पूछे, भैया ये मंदिर शिव मंदिर का रास्ता ही सीधा है क्या, पूरी शिव मंदिर जाना। तो पुजारी ना, ये जो दुकानदार, वो दुकान में कुछ सोन पत्र बेच रहा था, कुछ ग्राहक भी आए थे खड़े थे, वो ग्राहक भी देख रहे थे उनको, और तो दुकानदार भी देखा, वो पूछे तो भैया यही रास्ता है क्या, नहीं ठीक ठीक बोलता मैंने, वो कुछ सामान पैक कर रहा था रख दिया, आकर बोला आपका नाम क्या है। ना भैया नाम से क्या है, मैं तो एक साधारण वैरागी संत हूँ, साधु ना, हाँ सो तो है मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपका नाम क्या है। ना मेरा नाम से आपके साधु आपका नाम बोलने को पीछे हटते हैं, नहीं बोलते हैं। बोले नहीं रास्ता में थोड़े बता दो ना, रास्ता तो सही, आपका नाम क्या बता। माधवनपुरी क्या बात है, मेरे नाम के पीछे क्यों पड़ा है। माधवनपुरी निकलने लगे, बोले इसको वो पूछूंगा नहीं। जैसे एक बैक स्टेप लिए तो पुजारी बोले रुको रुको रुको, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ ना, क्या आपके नाम माधवेंद्रपुरी तो नहीं। तो बाबा जी बोले मैं आप ही हैं, आप ही हो, मैं आता हूँ, आप रास्ता क्या बता, मैं आता हूँ ना आपके साथ, दुकान बंद करते। बोला आप बाद में आना शाम को, उनका जो ग्राहक आए थे आप बोला शाम को, अभी दुकान बंद, दुकान बंद कर दिया, जो पैकिंग था रख दिया, दुकान ताला मारा और निकल पड़ा। मैं तो आपके साथ ही चलता हूँ, चलिए आपको रास्ता बताऊं क्या, मैं लेकर जाता हूँ, चलिए आपके साथ में निकल पड़ा। निकल करके वो दो साइड में गली रास्ता होता है, इस दुकान के पता है, जानता ना, वही है, कौन है, कौन है ना, वही वही ना, हाँ वही, आप भाषा से समझ जाते हैं, वही ना, अब मैं भी आता हूँ, वो कबाड़ बंद करे, शटर बंद करे, इधर है, यही है, पता है, है मेरा पास है, मैं लेकर आ रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। भाई मंदिर तक पहुंचते पहुंचते सकड़ो, अरे ये क्या है भाई। माधवेंद्रपुरी तो बहुत बेचारा नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये तो ऐसे व्यवस्था होकर बैठा है, बाकी ग्रुप जाके पहुंच गए। अरे बड़े भाव से उनका दर्शन, खान पान, रहन सहन, इतना व्यवस्था बेचारे सोच भी नहीं सके थे, इतने सुंदर भाव से उनका व्यवस्था, खान पाना की व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, इतना हुआ, राजा तक खबर पहुंचा दिए, जितने बड़े बड़े सेठ साहूकार पंडा मंडा और राजा सब ला करके, सब बोले किस लिए आए थे बाबा, और कुछ दिन रुके, 15 दिन कर भी रुके यहाँ, और सभी ने किसी को कोई किलो, कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, 7 किलो, राजा तो 40 किलो दिया चंदन, वो एक क्लास का चंदन, सब घर घर से कहां से इकट्ठा करके 80 किलो चंदन, एक नया पैसा नहीं इकट्ठा हो गया, केवल 80 किलो 40 किलो कपूर, कैम्फर के उसके साथ चंदन के साथ और सेंट होता है। बूढ़ा बोला मैं उसको लेकर कैसे आऊंगा, तो भिखारी हूँ, इतना लेकर तो चल भी नहीं सकता। तीन लोग हार करके दिए, बोले तीन लोग आपके साथ ही जाएंगे, पेमेंट हम करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ी देर में बात करता मैंने। तो बोले तीन लोग के आपके साथ ही रहेंगे, हम का पूरा परिवार का हम पेमेंट करते हैं, वो ढोकर के लेंगे आपको कुछ पेमेंट नहीं। लेकिन इतने सारे चंदन फंदन रास्ता में, बहुत चेक पोस्ट आता है, उसको वे भी लग रहा सब कागज पत्र, राजा ने स्वयं कागज पत्र लिखा करके स्टाम्प मार करके जो बिल परमिट क्या बोलते हैं उसको, नो एग्जम्प्टेड, फुल टैक्स एग्जम्प्टेड, पूरा टैक्स एग्जम्प्शन पेपर पक्का बना करके दिया, साइन करके सब कुछ बना करके दे दिया। बोले एक फकड़ राम गिरधारी कुछ भी नहीं है, इतने चंदन कहां से लेकर आता, कैसे लेकर आता अगर भगवान खीर चोरी ना करते। एक कुल्लड़ दूध यहां चोरी किए, यहां 80 किलो चंदन प्राप्त हुआ। अगर ये नहीं होता कहां बुढ़ा को मिलता, मिलता कहां बेचारे मिलता, भिखारी तरह घूमता। आज तो दुकान बंद बंद करके दुकानें दौड़े, मैं इतना देता हूं, मैं इतना देता हूं, सब देने लगे, सब इकट्ठा हो गया। ये केवल एक क्या, एक कप खीर का। इसीलिए पुजारी बोले तुम लेकर आओ, नहीं तो प्रचार कैसे होगा, मेरा पेमेंट कैसे होगा, और भक्तों को माल कैसे मिलेगा। करवाने वाले वही हैं, करवाते वही हैं, वो समझ रहे, वही करवाए, वही दिलाए चाहिए, इसलिए चोरी कराए। नहीं तो कई, आप सोचिए चोरी का मतलब, चोरी का, चोरी का अर्थ क्या मुझे बताओ, चोर किसको बोला जाता है, चोर का डेफिनेशन क्या है, दूसरे किसी का भक्ति का, दूसरे के संपत्ति का, केवल संपत्ति के हर से। आप, आपके पिताजी है ना, आप अपने पिताजी के संपत्ति ले जाते हैं तो आपको चोर कह चाहेंगे, क्यों, आप संपत्ति हम ले, पिता की संपत्ति नहीं लेते, लेते तो फिर क्यों चोर क्यों नहीं कहता है?
वो, से ही,
तो फिर केवल संपत्ति के लेने से चोर नहीं होता, दूसरे किसी का संपत्ति के लेना उनका बिना अनुमति से, जिसी का संपत्ति है उनको बिना बोल करके, उनका सैंक्शन बिना ले करके, उनका परमिशन बिना ले करके, अगर उनका दूसरे पराये का धन आप लेते हैं तब कोई आपको, वही व्यक्ति फिर दूसरा नहीं, वो व्यक्ति आपको चोर कह सकता है कि मुझे बिना बोले चिरा कर छिपा करके मेरे संपत्ति ले गया उन्होंने, बिना बोले ले गया। अगर किसी के बगीचा से एक फूल है, ये फूल भी आप ले आए, अगर उसको बिना बोले लाए तब चोर कहा जाएगा, लेकिन बोल कर लाए तो चोरी नहीं कहा जाएगा, है ना, नहीं चोरी गेट बनने से होता, बिना बोले ले लेना। तो ये जो ईशा वास्यम इदम सर्वम जत किंचत जगत्यम जगत, ये सारे संसार सारे जगत की वस्तु किसका है, तो सभी तो उनका है, वो काहे को किसी बोलने जाए, तो काहे उनको चोर बोलते हैं हम लोग। ये गौशाला उनका ही था, पुजारी उनका ही था, सारे भोग प्रसाद उन्हीं का ही था ना, वो एक कुलड़ ले, 12 कुलड़ ले, सारे ले ले, किसी बाप का कुछ लेता है क्या, क्यों इसे कोई चोर बोलेगा। लेकिन अभी तक वो पता नहीं, माधवंत पुजारी 600-700 साल पहले हुए थे, अभी तक हम चोर चोर बोलते हैं हम। किसी व्यक्ति को चोर बोलना कोई अच्छा बात है क्या, असम्मान है ना, भगवान सबसे सम्मानीय व्यक्ति है ना दुनिया में, दी वर्शिपेबल, मोस्ट वर्शिपेबल लॉर्ड है ना, नहीं भगवान से बढ़कर कोई बड़ा है कोई, भगवान बोलते मेरा कोई समान नहीं हो सकता, मेरे से बड़े तो बात ही अलग है, मेरा समान तो कोई है ही नहीं। मत परतरंग नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरा समान कोई हो ही नहीं, मेरे से ऊपर कोई हो सकता, सबसे पूज्य सम्मानीय व्यक्ति है, इतने बड़े सब्जे पूज्य नमस्य नमस्कार योग्य भक्ति करने योग्य परम पुरुष को चोर कहना क्या उनका सम्मान है ना उनका अपमान है, आप क्या सोचते हैं, अच्छा बात है, हम भगवान को पूजा उपासना करना चाहिए, उनको चोर कहेंगे अच्छा बात है, क्यों कहते हैं हमने, अभी तक बोलते ना, गया था आपने दर्शन किया किसको, खीर चोर क्यों बोलते हैं, ब्रजवासी क्यों बोलते थे,
वो प्रेम से बोलते,
ब्रजवासी बोलते चलो उनका घर का सामान ले, यहाँ किसका घर का सामान लिया, वो आपका तो नहीं लिया था, आप क्यों बोलते चोर, वो बोलते भाई जिनका चोरी हुआ वो बोल सकता चोर, आप क्यों बोलते हैं। नहीं प्रभु जी का समझ लिया तो बोल सकते मेरा समझ चोरी हो गया, आप सभी क्यों बोलते हैं चोर? ठीक है भाई चोरी किया था, दो साल पांच साल दो साल दस पांच साल तो कोई बोलेगा रिकॉर्ड खराब हो गया मिट गया गया, लेकिन ये सैकड़ों साल के बाद में चोर बोलता रहा है पूरे दुनिया लोग बोलता, ये तो मानहानि केस करना चाहिए नहीं? अगर आप लोग होते आप कोई सच में कोई चोरी टोरी कर लिए भी होते कहीं बाई मिस्टेक कभी नाम ले लिया चोर का कोई अपना हमको ये दे दिया तो आपने रफानामा कर लिए उनको सामान वापस दे दिए थोड़ा बहुत तो उनको जुर्माना फुरमाना दे दिए हो गया कम खत्म, अब 10 साल के बाद कोई उनको केस कोई बोले आप गुस्सा नहीं होंगे? तो आप कर लिया तो दे दिया उनको सब रफा किसे खत्म, फिर क्यों मुझे बोलते बदनाम करते? तो भगवान की वजह से नहीं सोचते मैं ये कब खीर लिया था कौन सा किसी बाप का किसका ले गया था, तो अभी तक 700 साल पहले के बाद तो अभी मुझे चोरी चोरी बोलते रहते हैं सारे दुनिया के लोग जो आता है तो बोलते चोर। व्हाट इज दिस, इतने बड़े आदमी को ऐसा बोलना तो भाई ठीक तो नहीं है, क्या विचार है? हाँ तो इसलिए हम उनको असम्मान करते रहेंगे नहीं? वो हमारा मान करते हैं हम उनका अपमान करते रहे, यही हमारा काम है नहीं क्या?
सॉन्ग बुक में लिखा हुआ है
इसमें सॉन्ग बुक में लिखा हुआ है कि भगवान उनको बोले कि भाई मेरा डायरी देखो मैं इतने इतने किया हूं तो इसलिए भाई ये किया है, हमारा क्या चोरी करके लिए उन्होंने? सबसे पहले बोलो से भगवान को चोर हम बोलते क्यों है?
हम चाहते
हैं कि वो चोरी करें। अच्छा आप सुनो साधारण नहीं जो प्रभु जी बोले मैं बता, आप नहीं देखो सही से विचार करो, कोई चोर को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर वो आएगा, जब पहचाना नहीं वो आकर चोरी कर सकता है, आपको मालूम नहीं मैं चोर करे तब आएगा पास रहेगा चोर के, जब पता चल गया चोर आप बोलते तो आएगा वो नहीं, वो नहीं आएगा, ये नहीं होता। चोरा बोलता है चोर फिर नहीं आएगा, जब तक नहीं जानते हैं, जैसे कोई भक्त है चोरी करना चाहते हैं आपसे, जब पता चल गया फिर तो सतर्क हो जाए फिर नहीं आएगा, जब तक नहीं जानता है खुल पुल के चोर मुझे नहीं है मुझे जानते हैं अच्छा दोस्त बोल के तब आपको पसंद आएगा चोरी करेगा, जब आप समझ दिया चोर बोलकर उसको कह दिया तो फिर आपको पसंद आएगा फिर नहीं आएगा, तो ऐसा मत समझो चोर बोलने से आएगा चोरी करने के लिए, कभी नहीं आएगा, फिर जो नहीं जानते हैं उनका चोरी करता है, जानते हैं उनका चोरी नहीं करेगा। ये बोला ना पदाश्रिता नाम समस्त चोरम, जो मेरा आश्रय लेते हैं जो मुझे पूजा करते हैं उनका मैं सबको चोरी करता हूं, जो उनको चोर चोर कहेंगे उनका क्यों चोरी करेगा? दिस क्वेश्चन इज अप टू यू, नेक्स्ट सेशन में आपसे आप उत्तर देंगे आप उसका, है ना? अरे कृष्णा भी आपका समय ज्यादा हो चुका है, अब ये क्वेश्चन से हम पूरा करते हैं, ये क्वेश्चन का उत्तर हम नेक्स्ट सेशन से बताएंगे, आप लोग बोलेंगे है ना? फोन भी मुझे छोड़ता नहीं आज। हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप कहाँ पे हैं अभी? मैं दिल्ली में हूँ, कल आ रहा हूँ वृंदावन, कल 2:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा ऐसा है। हाँ अच्छा रास्ते मिल जाएंगे, मैं जाते समय रास्ता मिल जाऊंगा, ठीक। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से वृंदावन आऊंगा कल। आप जिस रास्ते में आएंगे एक्सप्रेस हाईवे में आएंगे, एक्सप्रेस हाईवे